اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى درود بھیجی محمد و آل محمد علیہ السلام. ذاکری کے سلسلے کا جو یہ کلاسز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک سلسلہ فقہ عزاداری سے ریلیٹڈ بھی ہے, یعنی عزاداری کے فقہی مسائل کیا ہیں اور شریعت کے جتنے بھی ہمارے افعال ہیں وہ سب کے سب شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں, یعنی حلال و حرام کے مسئلے عزاداری کے سلسلے میں بھی ہیں. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ذاکری جس وقت آپ کرتی ہیں تو لوگ ذکر و فضائل اور مصائب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام وہ سننے کے لیے آتے ہیں, احکامات دین سننے کے لیے آتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ اختلافی باتیں سنیں, جھگڑے والی باتیں سنیں, یک طرفہ نظریات سنیں, ذاکریہ ذاکرہ کے ذاتی نظریات کو سنیں, ان کے ذاتی عقائد یا ان کی ذاتی تحقیق یا ان کے ذاتی ذوق کے متعلق معلومات لینے نہیں آتے. اچھا, اسی کے اندر سے ایک مسئلہ جو آج ہم آپ کو ایک لحاظ سے اس میں ایک ہدایت بھی کریں گے کہ ذاکر اور ذاکرہ کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ اختلافی مسائل جو ہیں معاشرے کے ان کو نہ اٹھائے جس سے معاشرے میں خلفشار, اور خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جس کو علماء نے منع نہیں کیا اور جائز قرار دیا ہے, ان کو پڑھنے کی اجازت دی ہے, وہ بہت شہرت پا چکی ہیں, اب اس کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی اقدام کرنا اور کہنا جبکہ اس کے اندر کوئی حرام و حلال کا بھی مسئلہ نہ ہو اور علماء نے اجازت دی ہو, ایسے ایشوز کو نہ اٹھائیں. یہ آپ لوگوں کا عیب شمار ہوگا, آپ کی اپنے آپ کو ذاتی طور پر نقصان ہوگا, لوگ آپ سے مجالس نہیں پڑھوائیں گے, معاشرے میں شروع سے ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی میں آج کل ایک بہت ہی مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور وہ ہے حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. یہ صرف ایک لحاظ سے صرف آج ہم اس کو کچھ ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو لوگ دلائل وغیرہ دیتے ہیں آپس میں, لیکن اس سے آپ کو تمام باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ان باتوں کو معاشرے میں کیوں نہیں اٹھانا چاہیے, نہ اس طور پر کہ آپ 100% اس بات کو ثابت کریں اپنی مجالس میں کہ نہیں ہوا تھا, اور نہ اس طور پر کہ 100% طور پر آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہوا تھا لہٰذا اگر کوئی پڑھے گا تو یہ حرام کام کرے گا. تو یہ کانٹروورشل چیزیں, اس کو علماء نے منع کیا ہے. اچھا, اب اختلافی جو تاریخی واقعات ہیں اس میں کوئی بھی کبھی حتمی رائے پیش نہ کریں, یہ بہت اہم بات ہے, جبکہ پہلے سے علماء اس کے قائل بھی رہے ہوں ان باتوں کے, واجب و حرام کا بھی کوئی مسئلہ اس کے اندر نہ ہو, صرف ایک تاریخ کی بات ہو, ورنہ پوری تاریخ کربلا اور معصومین کی جو بھی تاریخ ہے وہ بہت سارے اختلافات سے بھری ہوئی. ابھی میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ایک مسلم و ثبوت مسئلہ نہیں بلکہ تاریخ میں اختلاف ہے, کچھ قائل ہیں کچھ قائل نہیں ہیں. تو جو بھی اس مسئلے کو اٹھا کر کوئی ایک یک طرفہ نظریہ پیش کرے گا تو وہ معاشرے کے اندر فساد پھیلائے گا. مثلا اب کون کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں اختلافی تاریخی مسائل کی؟ مثلا ایک ہے ہمارے ہاں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. 18 سال کی عمر آپ ان کی سنتی ہیں کہ مجالس کے اندر, اور آیت اللہ صادق روحانی نے پوری اپنی تحقیق کی ہے کہ وہ شادی شدہ بھی تھے, صاحب اولاد بھی تھے, اور ان کے زیارت نامے کو بھی اس کے طور پر پیش کیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی, تو جو حضرت قاسم کے متعلق ہے بات وہی حضرت علی اکبر کے متعلق بھی ہے, وہی اختلاف. اب اگر کوئی بھی شخص اس بات के पीछे लग जाए, और अगर कोई आलिम मसलन पढ़ दे कि वो शादीशुदा थे और आयतुल्ला सादिक रूहानी ने मसलन ये तहकीक पेश की है, तो उसके पीछे अगर लग जाया जाए कि नहीं नहीं हुई थी और फला फला उलमा तो कायल हैं कि नहीं हुई, तो क्यों पढ़ा पढ़ा जा रहा है और गोया हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की कोई किरदार कशी की जा रही है, तो ये इख्तलाफी एक मसला है। इसको यक तरफा नजरिए के तौर पर पेश करना और दूसरे की बात को मुकम्मल रद्द करना, ये किसी भी तौर पर मुनासिब काम नहीं होगा। ये इख्तलाफी तारीख के मसले इसके अंदर ना पड़ें और ना ही इनको बयान करें। इसी तरीके से मसलन मादर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, उनकी जो वालदा गिरामी थी हजरत लैला, क्या वो करबला में मौजूद थी, खुद एक तारीख का एक इख्तलाफी मसला है कि वहां पर मौजूद थी या नहीं मौजूद थी। कुछ कहते हैं कि मौजूद थी, कुछ कहते हैं कि मौजूद नहीं थी, इसमें भी कोई इख्तलाफ की बात नहीं करनी चाहिए। और कोई भी शख्स कोई भी बात अगर बयान कर रहा हो, मसलन वो कह रहा हो कि हाँ मौजूद थी तो कोई बात नहीं, वो भी तारीख का एक चीज पेश कर रहा है, बस वो इस तरह से ना पेश करे कि हतमी तौर पर पेश करे कि इसके अलावा जो भी अगर कोई बात कहेगा तो वो गलत होगी, हराम होगी, बातिल होगी, उसके खिलाफ जिहाद करना जरूरी है, ये बात तहकीक से साबित हो चुकी है, तो ये गलत एक नजरिया और तरीका बनेगा। इसी तरीके से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, दुरूद भेजिए मोहम्मद उनकी जौजा हजरत लुबाबा, क्या ये वाकई करबला में मौजूद थी या नहीं। ज्यादातर कहते हैं कि मौजूद नहीं थी और मदीने में थी, और मसलन क्योंकि उम्मुल बनीन जो खुद उनकी सास थी वो उनके पास मदीने में उनकी खिदमत के लिए मौजूद थी, कुछ कहते हैं कि नहीं करबला में मौजूद थी। खुद हजरत उम्मुल बनीन के मुतालिक ये कन्फर्म बात नहीं है कि वाकई करबला जिस वक्त हुआ तो उम्मुल बनीन हयात भी थी या नहीं। कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं वो उससे पहले इंतकाल कर चुकी थी, और कुछ कहते हैं नहीं वो जो वाकया भी मिलता है कि मेरे चार बेटे थे और ख्याली उन्होंने कब्रें बनाई थी। तो तारीख के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इस तरह के इख्तलाफात मौजूद हैं। इन तारीखी इख्तलाफात से पूरी तारीख जो है वो भरी हुई। या मसलन तारीख में है कि बनू हाशिम के पहले शहीद कौन थे, कुछ कहते हैं हजरत अली अकबर थे, कुछ कहते हैं नहीं फला फला शहजादे जब वो तीर आकर लगे थे तो वो भी सब बनू हाशिम के शहजादे थे जो उनसे पहले शहीद हुए। इसी तरीके से हजरत रुबाब और उम्मे रुबाब का एक कजिया है तारीख के अंदर। रुबाब अलग हैं, उम्मे रुबाब अलग हैं। कुछ उलमा इस बात के कायल हैं कि रुबाब जो थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जौजा थी और उम्मे रुबाब इमाम हसन की जौजा थी। इमराउल कैस जो थे पैगंबर के एक सहाबी, उनकी तीन बेटियां थीं, एक की अमीरुल मोमिनीन से शादी की थी उन्होंने और बाकी दो बेटियों की इमाम हसन और हुसैन से की थी। तो खुद तारीख के अंदर इस तरह के, इस पर भी उलमा को एतराजात हैं कि जो मैंने बात पेश की इस पर भी वो है, तो कोई यकतरफा बात पेश नहीं की जा सकती। फिर एक बहुत ही बड़ा मसला पेश आता है जो आगे अभी गुफ्तगू में आगे चलकर ही आएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादें कितनी थी, और औलादों के अंदर भी यह मसला पेश आता है कि बेटे कितने थे और बेटियां कितनी थी, बेटे कितने थे और बेटियां कितनी थी। और यह इख्तलाफ आइम्मा की तमाम औलादों के सिलसिले में, अभी आगे चलकर उनकी भी तफसील आएगी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कौन सी बेटी कैद खाने में शहीद हुई, यह खुद बहुत ही बड़ा मारेकतुल आरा मसला है। क्या वो हजरत रुकैया थी या हजरत सकीना थी, और रुकैया नाम की कोई बेटी थी भी या नहीं इमाम की, इस पर खुद एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है, इसकी भी तफसील आगे चलकर आने वाली। फिर एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ हजरत फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का है कि क्या वो अव्वल तो उनका वजूद था भी या नहीं, और दूसरा था तो वो मदीने में छोड़ के आ गए थे उनको, या तमाम बेटियों को अपने साथ इमाम हुसैन ने अपने सफर करबला में साथ रखा था। ये तमाम बातें तारीख के अंदर इख्तलाफी। इसी तरीके से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मसलन हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा उनका मदफन कहां है, उनका रोजा कहां है। ज्यादा मशहूर तो यही है कि वो शाम में, और बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत कवी रुझान है कि उनका शाम में ही है। लेकिन कुछ उलमा इसके भी कायल हैं कि यानी कुछ तारीखों के अंदर यह बात भी आई है, और एक उनका एक रोजा मिस्र में भी है, मिस्र में, اور آیت اللہ صافیہ گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ اس روزے کی زیارت کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ بھی جانا چاہیے، یعنی جہاں جہاں احتمال ہو وہاں پر انسان جائے، جیسے کہ حضرت شہربانو کا وہ تہران میں جو پہاڑی کے اوپر جو وہ بنا ہوا ہے وہ ثابت نہیں ہے علماء کے نزدیک، لیکن علماء پھر بھی لے کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں وہاں جائیے آپ، ان کی یاد آئے گی، آپ زیارت پڑھیں گی، کچھ نہ کچھ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائیے جس جس جگہ پہ بھی احتمال ہے. اور کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں جن کے اندر آیت اللہ محسن امین عاملی، وہ فرماتے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے اس کے بعد باہر گئی نہیں ہوں، اور اس کے بعد ان کی وفات بھی وہیں پر ہوئی اور جنت البقیع میں دفن. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی ان مسائل کے اندر کتنی زیادہ تفصیل، اس طرح کے بے شمار واقعات اور تاریخی واقعات ہیں جس میں اختلاف ہے اور کوئی یقینی بات نہیں. یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ کے بارے میں امکانات زیادہ ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں امکانات کم ہیں، اقوال علماء ادھر بھی ہیں، اقوال علماء ادھر بھی ہیں، آرا ادھر بھی پائی جاتی ہیں، آرا دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس جو دوسرا نظریہ اس سلسلے میں بھی کتابیں، طرفین میں سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. تو کسی ایک نظریے کو، کسی ایک بات کو، کسی ایک تحقیق کو لے کر تمام دیگر افراد کی تحقیقات کو باطل قرار دینا، اس سے فساد اور اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ بس میرا نظریہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی نظریہ پیش کرے گا وہ نظریہ غلط ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا، وہ افترا ہوگا، وہ کذب ہوگا، وہ بہتان ہوگی، وہ مثلا کردار کشی ہوگی، یہ گویا دین کی عمارت منہدم ہوگی. اگر اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فساد کی طرف اس کا مطلب لے جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی اس وجہ سے باتیں سب بیان ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے مختلف پہلو اس زاویے سے پیش کیے جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یک طرفہ طور پر کسی ایک تحقیق کو بیس بنا کر اور اسی پر سارا زور نہیں ڈال دینا چاہیے، اور دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا. اچھا، اسی طرح سے ایک روایت ایک دفعہ مولانا علی نقی نقن صاحب نے بھی، علامہ علی نقی نقن صاحب، انہوں نے بھی پیش کر دی تھی، اور آج تک لوگ ان کو اتنا برا بھلا کہتے آئے ہیں ان کے انتقال کے بعد بھی. مثلا ایک روایت ملتی ہے بطور تذکرہ انہوں نے کہ کربلا میں پانی موجود تھا یا نہیں، اس پہ ایک روایت پیش کر دی تھی. اس کے بعد سے آج تک اتنا زیادہ ان کے خلاف باتیں کی گئیں. تو ابھی قوم اس طور پر علمی لحاظ سے اتنی متحمل نہیں ہے کہ علمی موضوعات کو ان کے سامنے، عوام کے سامنے آپ لا کر پیش کر دیں جبکہ وہ مشہور نظریے کے خلاف ہو. تو ایسے ہی بہت سارے نوجوان آج کل جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور کہیں بھی انہوں نے کوئی آرٹیکل وارٹیکل کسی جگہ پڑھ لیا، کسی کتاب کے اندر، سوشل میڈیا وغیرہ پہ، تو اس کو بالکل حتمی طور پر سمجھ کر اور اس کے لیے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی عالم اگر وہ روایت پڑھتا ہے تو وہ مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور منع کرنے لگتے ہیں کہ یہ غلط روایت آپ پڑھ رہے ہیں، یا ان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے جو کم علم افراد ہیں ان کے لیے خود امام خمینی نے باقاعدہ اپنی ایک خطاب کے اندر، امام خمینی نے ایک بات کہی تھی 1358 ہجری شمسی میں، خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا امام خمینی نے کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعضاء میں جاتے ہیں اور وائز اور مقرر یا ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے، اور ایسا کہنا بھی مجلس اعضاء کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی امام خمینی نے ایسے کم علم افراد کو کہ اگر کوئی روایت پیش کر رہا ہے، تاریخ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہنے لگے نہیں آپ یہ غلط روایت پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. اس سے پوری آپ گویا ایک مجلس اعضاء کے جو حملوں میں سے ایک حملہ جو ہے وہ امام خمینی نے قرار دیا. تو تاریخ کے اگر کسی واقعے کے اندر کوئی واجب و حرام کا مسئلہ نہ ہو، صرف ایک تاریخی بات ہو، علماء اس کے کچھ قائل بھی رہے ہوں اور اس کو بیان کرنے کی اجازت دیتے ہوں، تو اس میں جھگڑا اور فساد کرنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کا یہی والا مسئلہ ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا کربلا میں حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی. صرف ایک علمی طور پر اس کے مختلف زاویے پیش کریں گے اور جو طرفین دلائل دیتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کسی بھی ایسے موضوع میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے جبکہ اس کے اندر کتنی تفصیل موجود ہوتی جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو ہم نے تو ایک صفحے کا پڑھ لیا یا کسی عالم کی 5 منٹ کی ہم نے किसी मौलाना की जो है वो तकरीर सुन ली और सोचा कि जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, बस इसके लिए हमें तब्दील करनी चाहिए। अच्छा, एक है अकद कासिम और एक है जो मेहंदी निकाली जाती। ये दो बिल्कुल अलग अलग मसले हैं। आज की जो हमारी नशिस्त होगी वो अक्के वाले मसले पर होगी, और एक रसूमात आज़ादारी के जो फिकही मसाइल हैं उसके अंदर खुद मेहंदी निकालना जायज़ है या नहीं, ये हमारी एक और नशिस्त होगी इसके बाद, यानी आज तो नहीं अगले दिनों में, उसके अंदर उसको हम तफसील से बयान करेंगे, उसके साथ दीगर मरासिम अज़ा का भी जिक्र आएगा। अच्छा, अब हजरत कासिम के अक्त की जो रिवायत है वो बास किताबों के अंदर मौजूद है, जो भी हम जिक्र करेंगे, कि जब हजरत कासिम ने आशूर में रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो इमाम ने इजाज़त नहीं दी। मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। अब कासिम बहुत गमगीन हुए, अचानक से उनको याद आया कि एक बाजू बंद मेरे बाबा ने दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, और वसीयत की थी कि बेटा जब तुम पर गमों का गलबा हो तो इस बाजूबंद को खोलकर देख लेना। कासिम को ये बात याद आ गई, उन्होंने बाजूबंद को खोला और वो जो तावीज़ था और उसके अंदर से इमाम हसन की वसीयत निकली कि बेटा अपनी जान को अपने चचा के ऊपर निसार कर देना। अब खुशी खुशी इमाम हसन इमाम हुसैन की खिदमत में आए कासिम, उनको वसीयत दिखाई, इमाम ने भी अपने भाई का जो खत लिया और बहुत गिरिया किया और कहा कि मुझे भी वसीयत थी कि मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी का अब तुम्हारे साथ करूं, और फिर रिवायत लंबी है। अब इस रिवायत के ऊपर उलमा के दो गुरोह एक लिहाज से जिसे कहा जाए कि बने। एक वो गुरोह है उलमा का जिसकी तादाद काफी ज्यादा है, जिनके नजदीक हजरत कासिम की शादी वाली रिवायत ये अब साबित नहीं है, और उनकी तादाद ज्यादा है और उसमें मराजे कराम भी शामिल है। लेकिन लेकिन दूसरा गुरोह है उलमा का जो ये कहता है कि हम इस शादी को हतमी तौर पर रद्द नहीं कर सकते, 100% ये नहीं कह सकते कि शादी नहीं हुई, ये दूसरा, और बल्कि वो कहते हैं कि माकूल हद तक एहतमाल शादी मौजूद है और उसको साबित भी किया है, माकूल हद तक इम्कान मौजूद है। अच्छा, दोनों ग्रुप्स के पास दलाइल हैं, दोनों के पास एतराजात हैं, दोनों के पास जवाब और उस जवाब की रद्द और उसके बाद दोबारा इस तरह से दलाइल का तबादला होता है। अच्छा, अब लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है जब दोनों तरह की बातें हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, पहला तो एक तो यह है कि क्या अगर कोई शख्स अकद कासिम की कोई रिवायत पढ़ता है तो क्या यह हराम है? तो जवाब है कि हराम नहीं है, बल्कि अभी आपके सामने कि वो उलमा जिनकी तादाद ज्यादा है जो कहते हैं कि अकद कासिम साबित नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि किताब का या आलिम का हवाला देकर इस अक्त को मजलिस में पढ़ा जा सकता है। अभी सारे फतवे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो फिर जब मामला इतना आसान है, ठीक है, बहुत से आपको बार बार अक्सर लोग वो फतवे दिखाएंगे कि देखिए उन्होंने कहा है कि साबित नहीं, उन्होंने कहा है साबित नहीं, उन्होंने कहा है साबित नहीं, लेकिन साबित ना होने के मायने क्या ये है कि ये चीज झूठी है? और लिख तमाम उलमा ने कहा नहीं, झूठ इसको झूठ नहीं कहा जाएगा, कोई चीज साबित ना होने के मायने ये नहीं कि वो चीज झूठी, बल्कि ये है कि इसको किताब का, क्योंकि तारीख के अंदर ये बात आ गई है, तो किताब का हवाला देकर या आलिम का हवाला देकर नकल किया जा सकता है। अच्छा, यानी यकीनी तौर पर उसको पेश ना करें, एक एहतमाल के तौर पर पेश कर दें। अच्छा, क्या ये अकद कासिम की रिवायत पढ़ना वाजिब है? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, कि जो इस बात का कायल हो वो किसी और को मजबूर नहीं कर सकता कि मैं, मेरे पास दलाइल मौजूद है कि हुआ था, लिहाजा पढ़नी पड़ेगी, लोगों को कायल करे और उसके जो मुखालिफिन हो उनको बुरा भला कहे, उनको जो है सख्त किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करे, नहीं उसके लिए भी जायज नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, एक फसाद बढ़ेगा। जिन उलमा के नजदीक साबित नहीं है उन्होंने भी एहतमाल और इम्कान के तौर पर इसको पढ़ने की इजाजत दी, और जिन उलमा के नजदीक बिल्कुल भी साबित नहीं है वो भी ज्यादा से ज्यादा, यानी हराम तो कोई भी नहीं कहता है कि इसको हराम है इस वाली रिवायत को मजलिस के अंदर पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा ये कहा है कि बेहतर है कि ना पढ़ें, यानी वो उलमा जो बिल्कुल जिनके नजदीक साबित नहीं है उन्होंने भी अच्छी खासी इसमें गुंजाइश छोड़ी। अच्छा, अब एक चीज और भी पैदा होने लगी है, वो ये कि देखिए मुकल्लिदीन टाइप के जो हम हमारी तरह के जो अफराद कम इल्म अफराद होते हैं, जाहिल अफराद होते हैं, उनके अंदर एक ट्रेंड जो है डाला जा रहा है या उनके अंदर पैदा होने लगा है, वो ये कि मुज्तहिदीन से उनके फतावे के दलाइल तलब करने का रुझान पैदा हो गया, जो कि तकलीद के मसले के खिलाफ है। हाँ, तारीख में उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वो उसके जवाब भी देते हैं। इस्तफतात तारीखिया मौजूद होते हैं, मराजे के अकायद तक के इस्तफतात मौजूद होते हैं। तो अब किसी में कोई सलाहियत है या नहीं, मसलन मुज्तहिद का फतवा लिखा और नीचे उस फतवे के लिए लोगों ने उस पर एतराजात करने शुरू कर दिए, ये कैसे मुमकिन है और वो कैसे मुमकिन है, और देखिए वो फला रिवायत के अंदर तो ये है और ये रिवायत तो मसलन जयीफ है, तो ये फतवा उनका सही नहीं है। यानी आम बिल्कुल अफराद जो कि बिल्कुल जाहिल किस्म के अफराद हों और मुज्तहिदीन की तहकीकात को छोड़कर छोटे मोटे मौलानाओं टाइप की जो है उनकी तहकीकात के ऊपर जा रहे हो, तो गोया इसी तरह से कहा जाएगा कि किसी स्पेशलिस्ट मौजूद है और आप किसी भी अताई के पास जाकर दिखा रहे हो, उससे जाकर मशवरा ले रहे हो अपनी बीमारी का। आपने कहा कि भाई इतने सर्जन पे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, हमारे मोहल्ले में कसाई एक है उसके पास चलते हैं, वो भी चीरफाड़ बहुत दिनों से बकरों की कर रहा है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो वो भी कर लेगा। रिक्शा ड्राइवर है, उसे आप कहेंगे जरा जहाज की सीट पे बैठ के इतने अरसे रक्शे चलाते रहो, 50 साल जहाज भी चला लेगा ये। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, ये एक मुकल्लिद के कैलिबर से बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है ना, वो इन बातों को समझ सकता है। खुद ही कयास आ रही है, हम लोगों ने करते देखा है लोगों को कि किस तरह से लोग मुज्तहिदीन के फतावे के मुताबिक बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि वो उलमा जिनके नजदीक अकद हजरत कासिम साबित नहीं है, वो कुछ दलाइल देते हैं इस बात के लिए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो ये दलीलें आपके सामने अभी जो पेश मैं कर रहा हूं, ताकि आपके सामने दोनों पहलू आ जाएं कि इस चीज में हाथ नहीं डालना है आप लोगों को, और आपको बहुत हद तक आज अंदाजा हो जाएगा कि चीजों में जो सरसरी सी नजर आती है उसमें कितनी तफसील मौजूद होती। तो उनके एतराजात में से एक एतराज यह है, पहला एतराज, कि ये रिवायत जो है जिसमें हजरत कासिम की शादी का चीज बयान हुई है, ये कदीम मोतबर किताबों में नहीं बल्कि तो 9वीं और 10वीं सदी हिजरी की जो किताबें हैं उसके अंदर है। वो कहते हैं कि जाहिर है तकरीबन 900 साल गुजर गए और ये रिवायत मौजूद नहीं थी, और 9 सदियां 10 सदियां इस तरह से तो इससे पहले नहीं थी, तो इसका मतलब है कि ये रिवायत झूठी। और कहते हैं कि सबसे पहले इस रिवायत को मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने अपनी किताब रौजतुश शुहदा में नकल किया, जो कि 9वीं सदी हिजरी के आलिम थे। और दूसरा ये रिवायत जो है फखरुद्दीन तुरीही, उनकी किताब अल मुंतखब, उसके अंदर ये वाली रिवायत मौजूद है। उसके मुताल्लिक भी कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भी शायद इसको मुल्ला वाइज़ काशिफी की किताब रौज़तुश शुहदा से लिया है। तीसरी जो किताब है वो अल्लामा फाजिल दरबंदी की अक्सीरुल इबादात है। इन किताबों के अंदर और फिर इन्हीं उलमा से दीगर बाद के उलमा ने नकल दर नकल किया है। तो ये रिवायत जो मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी ने रौज़तुश शुहदा के अंदर लिखी है, क्योंकि वो 9वीं सदी हिजरी के आलिम थे, सबसे पहले उन्होंने लिखी है, तो इतने अरसे बाद ये रिवायत क्यों आई, ये मनाबे अव्वलिया जो बिल्कुल अव्वलीन किताबें हैं हमारी, उसके अंदर ये रिवायत क्यों नहीं है, लिहाजा इस रिवायत को झूठा समझा जाएगा, वो ये कहते हैं। और दिल को बड़ी लगने वाली भी बात लगती है कि हाँ इतने अरसे बाद ये रिवायत क्यों आई। तो इसका जवाब वो उलमा देते हैं कि जो इस अक्त के कायल हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए रिवायात का बिल्कुल अव्वलीन किताबों में मौजूद ना होना उसके झूठा होने की दलील नहीं। मसलन उसकी मिसाल भी दी उन्होंने, यानी जरूरी नहीं कि वो रिवायात जो कि बाद की सदियों में नकल हुई हैं वो सब रिवायात झूठी समझी जाएंगी, क्योंकि इब्तदाई किताबों के अंदर नहीं। मसलन उसकी एक दलील देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे नमाज वहशत कब्र की जो रिवायत है, नमाज वहशत कब्र की रिवायत 9वीं सदी हिजरी की रिवायत है, यानी 9वीं सदी हिजरी में सबसे पहले इसको रिवायत को नकल किया गया, नमाज वहशत कब्र। सब लोग नमाज वहशत कब्र पढ़ते हैं, आजकल सारे मराजे की किताबों के अंदर نماز وحشت قبر کا تذکرہ ہے. تو یہ روایت خود 9ویں صدی ہجری کی ہے. تو 9ویں صدی ہجری کی جب روایت ہے تو آپ نے اس کو کیسے لیا؟ بیچ میں ایک بات آ گئی تو یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ روایت میں ہے کہ جو شخص بھی وحشت قبر اس کو دامنگیر نہیں ہوگی جو مکمل رکوع کو انجام دیتا ہوگا. یعنی طویل رکوع آپ کریں, خشوع خضوع کے ساتھ کریں, صحیح قرات کے ساتھ کریں, اس کا ذکر جو ہے, تو یہ سب چیزیں. تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی روایت جو نماز وحشت قبر کی ہے یہ بھی تو 9ویں صدی ہجری کے اندر آئی ہے, پھر اس کو آپ نے کیسے لیا؟ اسی طرح سے اربعین کی جو روایت ہے, اربعین کی یہ 7ویں صدی ہجری کی روایت ہے. ابن طاؤس نے سب سے پہلے اربعین کی روایت 7ویں صدی ہجری کے اندر بیان کی. تو جب ہم 9ویں صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کی روایت لے رہے ہیں تو حضرت قاسم کی 9ویں صدی ہجری کی روایت لینے میں پھر کیا حرج ہے ان علماء کا یہ کہنا؟ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, بلکہ علماء نے ایک بات کہی کہ فضائل وغیرہ کی جتنی بھی روایات ہیں آئمہ کے جس میں فضائل ہیں, ضروری نہیں کہ وہ تمام کی تمام ابتدائی کتابوں کے اندر موجود ہوں, وہ بعد کی کتابوں کے اندر بھی آئیں. تو بہت سی روایات کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں, بہت سی روایات بعد کی کتابوں میں ہوتی ہیں, تو یہ اس بات کا لازمہ نہیں. اور علماء نے اس کی ایک اور بھی مثال دی, علامہ کفامی جو ہمارے دعاؤں کے سلسلے کے بہت بڑے عالم گزرے اور بہت ہی معتبر ہے, جبل عامل لبنان میں ان کی قبر مبارک بھی ہے, اور وہ ملا واعظ کاشفی کے بالکل ہم اثر علماء میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے عقد قاسم کی روایت لکھی. یعنی علامہ کفمی کا انتقال 895 ہجری میں ہوا ہے, ملا واعظ کاشفی کا 910 ہجری میں ہوا ہے, یعنی 15 سال پہلے علامہ کفمی انتقال کر گئے تھے ملا واعظ کاشفی, یعنی دونوں ہم اثر علماء میں سے تھے. انہوں نے کتنی ہی باتیں اور روایات جو مجمول غرائب و معذور رغائب کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر نقل کی ہیں جو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی, لیکن ان کی اس کتاب کو علماء نے رد نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے کچھ ضعیف روایتیں اس کے اندر ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی علامہ کفمی کی اس کتاب کو ایک مناسب درجہ دیا جاتا ہے. لیکن روضۃ الشہداء کے متعلق اچانک سے بہت سے لوگوں کا ایک بہت ہی سخت گیر قسم کا نظریہ بن گیا ہے, ابھی اس کے متعلق بھی ہماری بات آتی. تو علماء یہ وہ افراد جو کہ عقد قاسم کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ کفامی کے لیے تو آپ نے مثلا ایک الگ معیار بنایا ہوا ہے, ان کی کتابوں میں بھی تو جو ہے بہت سی روایت ایسی ہیں جو ابتدائی منابع میں نہیں پائی جاتی, لیکن وہی روایت اسی طرح کی روایت جو شیخ تروہی اگر نقل کریں یا علامہ کاشفی نقل کر دیں تو آپ جو ہے ان کے اوپر اعتراض ہونے لگتا ہے. اور خود ابن طاؤس, اب تھوڑی سی ذرا خوش گفتگو اس کے بعد آگے چل کے آ جائے گی, لیکن یہ سب باتیں آپ کے کام کی ہوں گی کہ ابن طاؤس کی کتنی ہی روایت, ابن طاؤس وہ ہیں کہ جن کا جو مقتل ہے, یعنی جو مصائب کی کتاب جسے کہا جائے جس کے اندر سارے مصائب بیان کیے ہیں ابن طاؤس نے, ان کی کتنی ہی کتابوں کی روایات کی کوئی سند ہی نہیں, لیکن پھر بھی ان کو جو ایک اہمیت دی جاتی. تو جو عبد الرزاق المقرم ان کی جو بڑی اوتھینٹک مقتل شمار ہوتا ہے امام حسین کا, یہ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, اگر واپس سے جو ذاکری کریں گے عبد الرزاق المقرم کا جو مقتل ہے اس کا اردو ترجمہ بھی لے کر اس سے روایات پڑھیں, علماء نے ریکمینڈ کیا ہے ان کو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقتل حسین ان کی کتاب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ شیخ تروہی کی شخصیت اور علمی جلالت بہت زیادہ تھی, بہت مشکل ہے کہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہو حضرت قاسم والی روایت, شاید یہ بعد میں کسی نے اضافہ کر دیا ہے, لیکن اس بات کا انہوں نے کوئی ثبوت مہیا نہیں کیا عبد الرزاق المقرم نے کہ کب یہ داخل کی گئی ان کی کتاب کے اندر. بس انہوں نے کہا کہ بہت بعید ہے کہ شیخ تروہی جیسا فاضل اور عالم اس روایت کو نقل کرے, ہو سکتا ہے کسی نے بعد میں اضافہ کر دیا ہو, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. اچھا شیخ عباس قمی ये अल्लामा तुरही जिन्होंने इस रिवायत को लिखा है अपनी किताब अल मुंतखब में, उनके मुतालिक कहते हैं कि वो इंतहाई आलिम थे, इंतहाई जाहिद थे, इंतहाई आदिल थे और बहुत जलील कदर शख्सियत उनकी थी। अलबत्ता ये वाकया जो हजरत कासिम का है, ये क्योंकि मोतबर किताबों से मुझे इसकी ताइद नहीं हुई है, लिहाजा शेख अब्बास कुम्मी इसको तस्लीम नहीं करते। यानी ये नहीं कहा, यानी पूरी उनकी इल्मिया जलालत शेख तुरही की मानने के बाद कहा कि ये मोतबर किताबों से इसकी तस्दीक नहीं हुई। यानी इस किस्म के अल्फाज एक आलिमाना है वो कहे जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जो भी हजरत कासिम की शादी की रिवायत मसलन पेश करेगा, वो उनकी किरदार कुशी करेगा, वो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना ये मुनासिब बिल्कुल नहीं, जैसे कि अभी आगे चलकर बात वाजे होगी। अब लोगों ने क्या किया, खासतौर पर नौजवानों ने, वो इधर उधर कुछ ना कुछ उन्होंने चीजें पढ़ी और उसके बाद शेख तुरही के लिए बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी के लिए इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अल्लामा दरबंदी के लिए गलीज जबान इस्तेमाल, हत्ता के बहुत से ऐसे अफराद के जो थोड़ा बहुत सती किस्म की मालूमात दीन की रखते हैं, उन्होंने भी बहुत ही इन तमाम जलील कदर उलमा के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी पसंद मसलन जो नजरिया है उसके खिलाफ अगर कोई चीज लिखी लिखी है, चाहे वो साबित नहीं भी है, बहुत सी चीजें किताबों में साबित नहीं होती, लेकिन उनको उनके लिखने वालों को गंदे अल्फाज उनके लिए और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना ये हराम और गुनाह ने कबीरा में से, इतने जलील कदर उलमा के लिए। तो यह हक किसी को नहीं है उन उलमा की तौहीन का। मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी, इनकी हिरात में बाकायदा इनकी कब्र है। अलबत्ता उलमा में जरा इस किस्म की बातें चलती हैं, उनके लेवल की हद तक उसको कहा जा सकता है कि चलो वो आपस में एक दूसरे के लिए कुछ सख्त अल्फाज तारीख के एतबार से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें शहीद मुताहरी ने मुल्ला वाइज़ काशिफी के लिए बहुत ही सख्त किस्म की उनके ऊपर तनकीद कर दी है एक दो चंद रिवायात की बिना पर, लेकिन उस पर भी जो महाराजे हैं उन्होंने एतराज़ किया कि शहीद मुताहरी को, यानी नाम तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने अभी आगे चलकर आएगा कि महाराजे ने उन सख्त जबान इस्तेमाल करने को पसंद नहीं किया। तो वो ये कहते हैं कि जो मुल्ला वाइज़ काशिफी थे इनका शिया होना यकीनी नहीं है, जिन्होंने ये रिवायत हजरत कासिम नकल की है इनका शिया होना यकीनी नहीं है, कभी सुन्नी इलाकों में जाते थे कभी शिया इलाकों में जाते थे। तो इस ये तो हमारे बहुत सारे उलमा की सीरत रही है, आलिम इतने ज्यादा इल्म रखते थे कि वो सुन्नियों के चारों फिकों के मुताबिक सुन्नी फिका के लिहाज से जवाब देते थे और शियों में शिया फिका के मुताबिक जवाब देते थे। तो उनका मुल्ला वाइज़ काशिफी का सुन्नी इलाकों में जाना और शिया इलाकों के अंदर जाना या उनको मशकूकुल मजहब करार देना ये सही नहीं। क्यों सही नहीं है? इस वजह से कि देखिए अभी जो मोतबर मकातिल बयान किए हैं आगे री शहरी ने, ये इल्मे हदीस के एतबार से ईरान के बड़े उलमा में इनका शुमार होता है और इनके बड़े अच्छे इदारे भी चल रहे हैं वहां पर, मीज़ानुल हिकमा वगैरह जो किताबें आप लोगों के पास अहादीस की होंगी अगर किसी के पास, तो वो इन्हीं के जेर असर कंपाइल की गई। इन्होंने बाकायदा जो मोतबर मकातिल उनकी एक फहरिस्त जारी की कि इनमें से उसमें कितने ही ऐसे हैं कि जो खालिसतन सुन्नी यानी गैर शिया अफराद हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के जो उलमा हैं उनकी जो किताबें हैं उनको मोतबर मकातिल में शुमार किया। मोतबर मकातिल में जैसे मक्तल ख्वारज़मी अहले सुन्नत के आलिम थे लेकिन कहा यह मोतबर मक्तल है, यानी वो उलमा जो इसका जवाब देते हैं वो कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी शायद सुन्नी थे, यानी एहतमाल है शक है कि पता नहीं शिया थे या शिया नहीं थे, इस बिना पर उनकी रिवायत को रद्द किया जाए उनके मक्तल को रद्द किया जाए, तो वो उलमा कहते हैं कि जो आपने इतनी बड़ी लिस्ट पसंद निकाली हुई है उसमें जो मक्तल ख्वारज़मी ये तो खुद सुन्नी आलिम थे, ये तो पक्के पक्के बिल्कुल सुन्नी थे, तो फिर इनकी इनको मोतबर किस वजह से करार दिया गया है? तो सिर्फ इस वजह से कहना कि कोई शख्स जो है उसका शिया होना कंफर्म नहीं है ये दलील नहीं बनेगा कि उसने जो रिवायत बयान की वो झूठी। या मसलन तबकाते कुबरा, ये तो खैर कोई और जिल्द इसके ऊपर लिखी हुई, लेकिन इब्ने साद की जो तबकाते कुबरा है उसको भी उन्होंने मोतबर मकातिल में जहां मसाइब का तस्करा हुआ उसको मोतबर समझा। इसी तरीके से अंसाबुल अशराफ जो अल्लामा बलाजरी की किताब है उसको भी जो अहले सुन्नत आलिम है लेकिन मोतबर मकातिल में इसको शुमार किया। इसी तरीके से तारीख तबरी है उसमें जहां पर हैं उनको भी मोतबर मकातिल में शुमार किया है, जहां मसाइब मौजूद हैं। तारीख आसम कूफी के अंदर जो मकतल मौजूद है उसको मोतबर मकातिल में शुमार किए, जो सब सुन्नी किताबें। इसके अलावा जो अलमोजमुल कबीर जो है अल्लामा तिबरानी की, उसको मोतबर मकातिल में शुमार किया है। इब्ने असाकिर की जो तारीख दमिश्क है उसको मोतबर मकातिल में शुमार किया है। इसके अलावा तस्करतुल ख़वाज़ सिबती इब्ने जोज़ी की है, और इसके अलावा अखबारुत तवाल जो कि अल्लामा दैनूरी की है उनको मोतबर मकातिल में शुमार किया है। तो वो उलमा कहते हैं कि सिर्फ एक शख्स का जिसके मुतालिक सिर्फ एक एहतमाल है कि शायद ये सुन्नी थे मसलन चलें, अगर इस बात को भी अगर हम मान लें, अव्वल तो ये बात भी सही नहीं है, अभी आगे चल के उलमा के अकवाल आएंगे। तो जो बिल्कुल प्योर गैर शिया उलमा है उनको आपने जब माना है उनके मकतल को, तो फकत काशिफी का मशकूकुल मजहब होना बिलफर्ज अगर ये कहा जाए ये उनको काबिल रद्द नहीं बनाता। इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ अलबत्ता आप उनके रिवायात के ऊपर एतराज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बिना पर उनको रद्द करना कि उनका मजहब सही तौर पर पता नहीं, शायद वो सुन्नी थे लेकिन अक्सर उलमा उनके शिया होने के कायल हैं, तो जो पक्के पक्के सुन्नी उलमा हैं उनकी बात को आपने मोतबर मकतल में कैसे शुमार किया। अब इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, यकीनन इसके भी जवाब दिए जाएंगे जा सकते हैं, फिर जवाब की भी जवाब दिए जा सकते हैं, उसका भी रद्द किया जा सकता है, लेकिन यह कि वो लंबी बहसें हैं। तो उस किताब को जो मुल्ला वाइज़ काशिफी की जिसके अंदर ये मौजूद है बात, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता और उस किताब को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा एक बात और भी याद रखें, आपके बड़े काम की होनी चाहिए, कि चंद गैर मोतबर वाकयात का या अहादीस का किताब में मौजूद होना उसको बेएतबार नहीं बनाता है। आप ये नहीं कह सकते भाई इस किताब के अंदर चाहे थोड़ी बहुत, मसलन मुल्ला वाइज़ काशिफी की किताब में 10-12 ऐसी जगहें हैं कि जिनको उलमा ने कहा कि नहीं ये इसके अंदर कुछ बातें ऐसी नकल हो गई हैं कि जो मुसामहात जिन्हें कहा जाता है, ये तसामो हो उनसे हो गया है, ये अनऑथेंटिक बातें हैं। मसलन जिसके अंदर बहुत सारी बातें आई हैं कि कैसे मुमकिन है कि लाखों का जो है वहां पर लश्कर हो और इमाम ने मसलन इतने हजार अफराद को जो है शहीद किया, और वो लोग कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि रोजे आशूर इतना टाइम इमाम के पास था और इसी टाइम में अगर ये अगर आधे मिनट के अंदर भी एक शख्स को कत्ल किया जाए तो इतने अफराद बनेंगे, तो इतने ज्यादा हजारों जो है वो किस तरीके से इमाम ने कत्ल किए। तो इसके भी बहुत सारे, और ये जो एतराजात किए गए हैं उनकी किताब के मुंदरजात पर उसके भी जवाब दिए जा चुके हैं कि वो भी गलत नहीं कहे उन्होंने। मसलन अगर हजारों का मजमा था, जैसे आयतुल्ला हाफिज बशीर नजफी ने कहा कि कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा देखें बाज औकात जब रिवायत में मिलता है कि इमाम जब जाते थे या कोई जाता था मैदान जंग में, तो उस वक्त एक भगदड़ मचती थी और खौफ से, और एक स्टैम्पीड होता था। आज भी आप देखते हैं हज वज पे स्टैम्पीड में 500 हजार 2 हजार जो है अफराद जो है वो शहीद हो जाते हैं, कहीं पे भी कहीं बड़ा मजमा होता है, और खास तौर पर उस वक्त जबकि सबके सब अफराद के पास मुख्तलिफ किस्म के हथियार नोकीले हथियार भी मौजूद हों और भगदड़ मच जाए तो हलाकतें और ज्यादा होंगी। तो उसके जवाब तो उलमा ने दिए हैं कि ये नहीं कि आप कह सकते कि रिवायात झूठी हैं जिनमें बहुत कसीर तादाद का तस्करा हुआ है, कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने लोग ज्यादा शहीद कर दिए, एक एक शख्स को भी तलवार से अगर करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। नहीं, वो स्टैम्पीड के जरिए भी हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि उलमा ने उसके बहरहाल अपने तौर पर जवाब दिए हैं। तो खुद आयतुल्ला खोई ने खुद ये बात कही है अपनी किताब जो मौजमो रिजालुल हदीस है, इल्मे हदीस की जो रिजाल की किताब है, उसकी 8वीं जिल्द में आका खोई ने कहा कि किसी भी किताब में चंद बातें अगर बातिल हैं या चंद बातें गैर मोतबर हैं उससे पूरी किताब नहीं हो जाएगी। फिर कहा, उन्होंने कहा है कि फिर किताब असूल काफी का क्या होगा, असूल काफी के अंदर भी जो हमारी कितनी मोतबर किताब है लेकिन उसके अंदर भी कितनी अहादीस ऐसी हैं कि जो कि ज़ईफ हैं और साबित नहीं है और काबिल एतबार नहीं है, तो उससे पूरी किताब असूल काफी तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी किताब को कंडेम कर दें। यानी उस तनाजुर में उलमा ने बात कही है कि मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी की किताब में अगर 10-12 चीजें मसलन इस किस्म की हैं जिसकी तोबास की तो तौजीहात भी पेश की जा चुकी हैं, जैसे यही कि इतने सारे अफराद को इतना लश्कर नहीं था और ये कैसे मुमकिन है वगैरह वगैरह, उसके भी उलमा ने जवाब दिए। खुद उसूल काफी के मुतालिक सिर्फ आपकी मालूमात के लिए कहूं कि कुल 16,000 100 या 16,200 के करीब रिवायात हैं असूल काफी के अंदर, जो बहसियत मजमू इस किताब के अंदर। अज़रिया इला तसानीफ़ शिया में आगे बुजुर्ग तहरारी ने कहा है कि यानी ये जो 16,000 रिवायात में से, इसकी आवाज को थोड़ा कम कीजिए, ये जो 16,000 अहादीस हैं इसमें से 9,485 अहादीस ज़ईफ़ हैं असूल काफी। तो क्या आप ये कहेंगे माज़ल्ला के पूरी किताब असूल काफी जो है वो पूरी किताब पूरी जो है वो ज़ईफ़ अहादीस पर मुश्तमिल है और ये हमारी जो है ना मोतबर किताबों के अंदर शामिल नहीं होगी? तो किताबों में गैर मोतबर चीजों का होना चाहे वो ज्यादा तादाद में क्यों ना हो, सोचिए कि 16,000 में से तकरीबन 10,000 अहादीस को अगर बुजुर्ग तहरानी ने ज़ईफ करार दिया। अगर अच्छा इसके अंदर भी उलमा के अपने कुछ मेयारात होते हैं उसको परखने की, कम और ज्यादा ये तादाद हो सकती है, वो इतनी फिक्स नहीं है, तो उस किताब को रद्द नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिहारुल अनवार कितनी मशहूर और मारूफ किताब है, आज इसके खिलाफ इतने सोशल मीडिया के ऊपर जाहिल किस्म के अफराद ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है कि गोया माजल्ला बिहारुल अनवार शायद कोई बहिश्ती जेवर टाइप की कोई किताब है जिसके अंदर हर किस्म के रद्ब याबिस जो भर दिया गया है और अनऑथेंटिक है। बाकायदा इतनी ऐसी बात है कि इसकी अजमत और जलालत लोगों की निगाह में बिहार की कम ना हो। आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने एक दरस खारिज के अंदर बहुत देर इस मौजू के ऊपर बोले हैं, उन अफराद पर शदीद तनकीद की है कि जो बिहार को अनऑथेंटिक किताब जो है करार देने पर तुले हुए। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उन उलमा के ऊपर इस बात का इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने तहरीफ की है और वाकई करबला के अंदर तहरीफ की है। देखिए बहुत सारी चीजों के अंदर शहीद मुतहरी ने जैसे कि अभी इससे पहले जिक्र हुआ कि कुछ मुतशद्दिद, ये थोड़ी आवाज कम करें भाई इसकी, तो ये एतदाल से खारिज होने वाली बात है, एतदाल से खारिज होने वाली। अच्छा उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि मुल्ला वाइज काशिफी ने तहरीफ की है। तो आयतुल्ला साफी गुलपाईगानी ने बाकायदा उनसे सवाल पूछा गया कि किताब रौजतुश्शुहदा जो मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी की है या इसरारुश्शहादा जो आगे दरबंदी की है, क्या ये तहरीफ शुदा इन मतालिब है इसके अंदर का वाकया करबला की? तो आयतुल्ला साफी गुलपाईगानी ने इसका जवाब दिया है कि मुझे इस बात का हक नहीं पहुंचता, मा हक न दारीन, मुझे इस बात का हक नहीं है कि मैं इन दोनों किताबों को लिखने वाले पर तहरीफ करबला करने का की तोहमत लगाऊं। और अगर उन किताबों के अंदर कुछ ऐसे मतालिब हैं जो कि जिनका वकू पजीर होना का एहतमाल है और उसके अदम पर कोई हमारे पास कतई दलील नहीं है तो हमें उसका इनकार नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर इस तरह की गोलाबारी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने झूठ मंसूब किया। हां अगर जो चीज आपके नजदीक साबित नहीं है आप उसको नकल ना करें, लेकिन यह कहना कि उन्होंने तहरीफ की है यह आजकल बहुत ज्यादा उसके ऊपर शुरू होने लगा है और तहरीफात आशूरा वगैरह के एतबार से जो चीजें शहीद मुतहरी ने पेश की उनका वो खुद एक साहिब नजर शख्सियत थे, उनका एक अपना नजरिया है, लेकिन दीगर उलमा और मराजे ने उसके जरा बरखिलाफ बात कही है और कहा कि हम रौजतुश्शुहदा वगैरह के जो लिखने वाले उलमा हैं अल्लामा दरबंदी पर, उन पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने तहरीफ की। हाँ ठीक है अगर आपके नजदीक कोई कतई बात है तो आप उसको उनकी किताब से नकल ना करें सिर्फ ये, लेकिन उन पर तहरीफ का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से खुद शेख अब्बास कुम्मी ने मुल्ला वाइज काशिफी के लिए देखिए क्या जुमले इस्तेमाल किए उनकी किताब है फवायद रजविया दर अहवाल उलमाए मजहब जाफरिया, कि वो जो थे जामे उलूम दीनिया आरिफ व मारिफ यकीनिया काशिफ इसरार मुसल्लम दर इल्म हदीस व तफसीर व रियाजी व हुसन तकरीर। शेख अब्बास कुम्मी ने कितनी ज्यादा तारीफ की है मुल्ला वाइज काशिफी की, तो उन पर तहरीफ का इल्जाम लगाना, कितने उलमा ने उनकी तारीफ की है, उनको मशकूकुल मजहब करार देना, ये एक कुछ उलमा ने इस नजरिए को अख्तियार किया लेकिन ज्यादातर उलमा ने इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा अब आगे एक चीज और आपके उसमें आ जाए, उस पर एक एतराज ये भी होता है और जो इसके कायल नहीं वो दलील ये देते हैं कि इस रिवायत का कोई सिलसिले सनद नहीं, कि उन्होंने कहां से लिया, इससे पहले किसी और ने इस बात को नकल नहीं किया। तो देखिए कितनी किताबें ऐसी हैं जो कितनी ही रिवायात ऐसी हैं जो कुछ ऐसी कुछ किताबों में और कुछ किताबों में नहीं। सारी किताबें हमारी एक तरह के मुंदरजात पर तो नहीं है ना, मसलन कुछ किताबें कुछ अहादीस जो है मसलन तहजीबुल अहकाम में हो और कुछ जो है वो मुल्ला याजरुल फकीह में हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब किताबों में एक तरह की हदीसें हों। कुछ ने नकल की है, कुछ ने नकल नहीं किया है। देखिए शेख सदूक, नहीं पहले एक बात और हो जाए कि जितने, क्या ये कोई असूल है कि तमाम वाकयात करबला के लिए हमारे पास मोतबर सनद होनी चाहिए? क्या किसी जगह पर है ये? तमाम उलमा ने कहा है, नहीं ये कोई असूल नहीं है, वाकयात करबला के लिए मोतब बयान करने के लिए मोतबर सनद का होना जरूरी नहीं। हां मोतबर रजाराय से मिल जाए एक अलग बात है, लेकिन ये कोई असूल नहीं। शेख सदूक की कितनी ही किताबें ऐसी हैं जो पहले मौजूद थी उसके बाद गायब हो गई। अच्छा जिस जमाने वो किताबें मौजूद थी उलामा ने उन किताबों से उन किताबों को कोट किया है, जो फतवे दिए हैं उसमें कहा कि ये फतवा हमने शेख सदूक की फला किताब के अंदर जो हदीस पाई जाती थी उसके मुताबिक ये फतवा दिया, लेकिन वो किताबें अब नहीं हैं, वो किताबें मौजूद नहीं। तो लेकिन पुराने उलामा ने कहा कि हमने खुद उनकी किताब के अंदर देखा, लेकिन वो किताब हमारे सामने नहीं। मसलन शेख सदूक की किताब अल मुर्शद पुराने उलामा ने कोट किया, लेकिन वो किताब हमारे सामने नहीं। शेख सदूक की किताब किताबुन नबुवा है, पहले जमाने में होती थी, अब वो हमारे पास नहीं। शेख सदूक की किताब है मदीनतुल इल्म, इसके अंदर हमारी जितनी भी, आपने देखा कि 16,200 के करीब तो सिर्फ असूले काफी की हैं, और चारों मोतबर किताबों को मिला लिया जाए तो उसमें जितनी अहादीस हैं उनसे भी ज्यादा अहादीस किताब मदीनतुल इल्म में थी। ये किताब पता नहीं कहां गायब हो गई, किस जालिम बादशाह ने गायब करवा दिया, आज तक इसका पता नहीं चला। पुराने उलमा ने मदीनतुल इल्म किताब को कोट किया है, अपने फतवों की बुनियाद बना है। यही वजह है कि इमाम खुमैनी तक इस बात के कायल थे कि मुतकद्दमीन उलमा से लेकर शेख तूसी तक के जमाने के शोहरत फतवा भी हुज्जत रखती, यानी हमारे सामने हदीस ना भी हो लेकिन उलमा ने अगर कोई फतवा दिया है किसी हदीस की बिना पर, तो उनके हमारे सामने हदीस ना भी हो तब भी हम उनके फतवे पर एतबार करके उसके मुताबिक फतवा दे सकती, शोहरत फतवा। तो फिर आप कहें कि जनाब इसका कोई, तो वजह इसकी है कि बहुत सारी किताबें पहले मौजूद थी अब मौजूद नहीं। अब बात का कोई शख्स तो ये हुज्जियत फतवा तो सोचिए, यानी जो शोहरत, जिस फतवे की शोहरत रही हो शेख तूसी के जमाने तक, तो उसके मुताबिक भी उलमा ने फतवे दिए। अच्छा कितने ही उलमा ऐसे हैं, जैसे हमारे ये मुल्ला महदी निराकी और मुल्ला अहमद निराकी, राइट साइड पर मुल्ला अहमद निराकी हैं जिनकी किताब उरूजुस सादा के नाम से उर्दू में तर्जुमा भी हो चुकी, और लेफ्ट पे जो ये मुल्ला महदी निराकी, ये तो बड़े साहिब मारिफत थे और बरज़खी जिंदगी को भी अपनी आंखों से देखते थे। मुल्ला महदी निराकी, मुल्ला महदी निराकी ने किताब लिखी थी मुहर्रिकुल कुलूब, गम हाय जासूस के नाम से इसका तर्जुमा भी हुआ। उसमें उन्होंने हजरत कासिम के अक्त के मुतालिक लिखा है, कहा कि कुछ उलामा ने इस वाकये को नकल किया है और कुछ उलामा ने इस वाकये को नकल नहीं किया है उनकी शादी के, और बाज मुतरद्दिद हैं, मशकूक हैं कि पता नहीं वाकया सही है या नहीं, लेकिन यह वाकया मैंने मोतबर किताबों में देखा है। देखिए अभी मैंने इससे पहले कहा कि पुराने उलामा के उन्होंने जो फतवे दिए हैं उन्होंने उन शेख सदूक की किताबों को देखकर उसमें जो हदीस पढ़ी खुद उन्होंने मोतबर किताब के अंदर देखा और फतवा दे दिया, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। मुल्ला महदी निराकी कह रहे हैं कि मैंने इस वाकये को मोतबर किताबों के अंदर देखा है और मैं उनके ऊपर एतबार करता हूं, लिहाजा मेरे नजदीक ये वाकया सही है और मैं इसको नकल करता हूं। बाकायदा सफा नंबर 410 पर मुहर्रिकुल कुलूब में मुल्ला महदी निराकी ने हजरत कासिम के सख्त को पूरा बयान किया, यानी जहां इसकी कितनी बड़ी तादाद है, मैंने जिससे पहले कहा कि ज्यादातर उलमा इसके कायल नहीं, महाराजे भी उनके नजदीक साबित नहीं, लेकिन खुद मुल्ला महदी निराकी कह रहे हैं कि हमारे पास, यानी हम लोगों के पास हदीस उस लिहाज से नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने खुद इसको मोतबर किताबों के अंदर पाया है। इसी तरीके से अल्लामा दरबंदी, वो ये कहते थे कि अगर कोई भी साहिब तहकीक हो तो इस अक्त के वकू पजीर होने के बारे में कवीजन पैदा होने के मुताल्लिक उसे कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो सैकड़ों साल से उलमा कह रहे हैं कि लोग मिंबरों से इसको बयान करते आ रहे हैं और शोरा हजरात इसको नकल करते आ रहे हैं, तो और सीरत निगार और तारीख दान इसको जो है वो मुसलसल नकल कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर इस वाकये को कभी कोई शख्स अगर बयान कर दे। एक मदीने से मदीने तक जो आयतुल्ला सैयद मोहम्मद जवाद ज़हनिया तहरानी की लिखी हुई किताब है, इसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया, उसके अंदर बाकायदा इस आयतुल्ला ज़हनिया तहरानी जिनकी किताब है मदीने से मदीने तक, उसके अंदर भी पूरा ये वाकया मौजूद है कि किस तरीके से जो कि अभी आपको तफसील उसकी सुनाई थी, तो वो पूरी रिवायत इसके अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से आयतुल्ला अबुल हसन शेरानी, इन्होंने नफसुल महमूम का जो तर्जुमा किया है दमा उस सजूम के नाम से, उसके अंदर भी इस पूरे वाकये को हजरत कासिम के इस वाकये को निकाह के वाकये को लिखा है। जिस तरीके से देखिए उलमा कहते हैं शेख सदूक की किताबें गायब हुई, इसी तरीके से शेख मुफीद की किताबें भी गायब हो गई, और बास किताबें ऐसी थी जो 400 साल पहले तक थी अब नहीं। अगर हाशिम बहरानी जिन्होंने मदीनतुल मुआजिज के नाम से किताब लिखी है, इसको भी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बातें करते रहते हैं कि इसमें बहुत सारे मौजजे ऐसे हैं कि जो साबित नहीं है। उन्होंने हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीनतुल मुआजिज में जो रिवायत नकल की हैं वो शेख मुफीद की उन किताबों से हैं अक्सर, के जो कि इस वक्त मौजूद नहीं लेकिन उनके पास मौजूद थी। अब वो किताबें गायब हो गई, आपको पता है कितने कुतुब खाने जलाए गए, शियत किन किन अदवार से गुजरी है, तो उसके अंदर बहुत सारी किताबों का गायब होना भी इस तरह के इख्तलाफात का सबब बना है। अच्छा, फिर एक और बात आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए, 400 असूलों पर मुश्तमिल समझिए एक लिहाज से 400 किताबें आइमा के असहाब ने लिखी, जिसमें खास तौर पर हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। चार सौ असूल, अच्छा ये किताबें भी गायब हो गई थी। फिर उसके बाद में साहिबान ईमान ने जब थोड़े से हालात बेहतर होते थे तो इन किताबों को जमा किया, जो कि हमारे छठे इमाम ने, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं सातवें इमाम, और उसके बाद तकरीबन और आइमा के भी ये असूल मौजूद थे इस तरह से, तो 400 किताबें। और खुद हमारे उस्ताद मोहतरम लामा सादिक हसन साहब किबला ने एक दफा आज से तकरीबन 25 साल पहले एक दर्स में हमें ये बात बताई थी कि उन 400 किताबों में से पहले उलमा ने 382 तक तकरीबन किताबें जमा कर ली थीं, और लेकिन 18 किताबें फिर भी मिसिंग थीं, जो छठे इमाम के दौर से सोचिए वो किताबें मिसिंग हो गई, या सातवें इमाम के दौर से, और उसके बाद वो अब थोड़े कुछ अरसे पहले आयतुल्ला हुसैन ब्रोजर्दी के दौर में 18 किताबें मिली। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत बड़ा इस बात का सबब बना है कि किताबों का गायब हो जाना। तो अव्वल तो उलमा ये कहते हैं कि जैसे शेख मुफीद की किताबें, शेख मुफीद की जो किताबें इरशाद है उसमें अक्सर रिवायात का सिलसिले सनद ही नहीं, लेकिन उसको भी उलमा मुरसल की कैटेगरी में डालते हैं, और अगर रिवायात ज़ईफ भी हो तब भी वाजिब व हराम में सिर्फ ज़ईफ रिवायत नहीं चलती, लेकिन तारीखी वाकयात की जांच में ज़ईफ रिवायत भी पेश की जा सकती है, और हाँ अकायद में नहीं चलेगी ज़ईफ रिवायत, फिकई मसाइल के अंदर भी मुस्तहबात और मकरूहात की दलीलों में कुछ उलमा कहते हैं चलती है, कुछ कहते हैं नहीं चलती है, तो मुरसल अहादीस को अक्सर उलमा का एक ग्रुप है जो कहता है कि मुरसल अहादीस को भी माना जाएगा। तो वाकयात करबला में ज़ईफ रिवायात को भी पढ़ने की इजाज़त है। आजकल इस बात का बहुत ज्यादा शोहरा हो गया कि रिवायत मुत्तसिलु सनद होनी चाहिए, बिल्कुल मोतबर होनी चाहिए, नहीं, वाकयात करबला में इस किस्म का कोई मेयार ही नहीं, ज़ईफ रिवायात को भी पढ़ने की इजाजत है। बाकायदा आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी से यह बात पूछी गई कि ज़ईफ सनद वाली जो रिवायतें क्या पढ़ सकते हैं मजालिस वगैरह के अंदर, तो उन्होंने लिखा है कि ख्वानदन बेदून इस्तेनाद व बसूरत एहतमाल वकू जायजस्त, यानी उसका इम्कान पाया जाता हो कि वकू पजीर होने का, तो बगैर सिलसिले सनद की रिवायात को भी पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता बेहतर है बाद में मशवरा दिए कि कोशिश करें कि मोतबर मनाबे से रिवायात को पढ़ें, लेकिन असलन उन्होंने फतवे के अंदर ज़ईफ रिवायात को पढ़ने की इजाजत दी है, तो मैंने बतौर मिसाल आपके सामने पेश किया, वरना ضعیف روایات کو دیگر علماء بھی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ خالی یہی نہیں زبان حال کے طور پر بھی واقعات کربلا کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ سنتی ہیں نا کتنی کتنے علماء سے آپ ایک ہی طرح کے مصائب کو سنیں، وہ الگ الگ طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ پورا روایت کے اندر جس طرح کے جو الفاظ ہوں ویسے ہی پڑھا جائے، زبان حال کے طور پر بھی پڑھا جاتی ہیں چیزیں، البتہ اس کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ زبان حال کے طور پر اس چیز کو پڑھ رہے ہیں۔ مثلا جب 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے تو حضرت زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کی طرف دیکھا اور رخ کیا اور کہا کہ عباس کاش تم ہوتے تو سوار کراتے۔ اب یہ والی روایت کی کہیں الفاظ نہیں حضرت زینب کے ایسا کہا ہو، لیکن زبان حال حضرت زینب کی حالت یہ تھی، گویا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عباس تم ہوتے تو سوار کراتے۔ زلجنہ نے زبان بے زبانی سے یہ کہا اور پھر کچھ الفاظ مثلا نقل کر دیے جائیں، تو زبان بے زبانی یعنی زبان حال کے طور پر چیز پیش کی جاتی، یعنی اس کے لیے تو روایت کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے زبان۔ یا بہت سے اکثر محتاط آپ نے ذاکرین یا علماء کو سنا ہوگا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے شاید اس موقع پر یہ کہا ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی اس ان کی حالت یہ تھی، گویا اپنی زبان حال سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو ضعیف روایت بھی پیش کی جا سکتی ہیں، زبان حال کے طور پر بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو پھر آخر صرف عقد قاسم کی روایت ہی کے لیے متصل السند صحیح السند روایت کیوں درکار ہے؟ تو ایک سادہ سا واقعہ ہے جس کو اطمینان ہو، امکان ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کا، جس کو اطمینان ہو رہا ہے، جو امکان رکھتا ہے وہ اس کو پڑھ لے اگر چاہے، ویسے تو پڑھا بھی نہیں جاتا عام طور پر یہ، کیونکہ اگر آپ سلسلے سند کی بحث کو لے کر آئیں گے تو تمام تاریخی واقعات کربلا کی تمام واقعات کی سند کو پھر آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ اور ایک عالم نے تو صحیح کہا ہے کہ پھر ایک جملہ صرف پڑھ کے اور ممبر سے نیچے اتارائیے کہ 61 ہجری کے سن میں 10 محرم کے دن امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بس یہ اوتھینٹک ہے، باقی تو سب باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے۔ تو کتنی دیکھیے ایسی چیزیں کہ اگر ہر ہر چیز کو اب کتنی مشہور چیزیں ایسی ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر سنتی ہیں علماء سے، مثلا وہ آپ سنتی ہیں کہ شمر ملعون کا امام حسین کے سینے کے اوپر سوار ہو جانے والی جو روایت ہے سر کاٹنے سے پہلے، باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت کتابوں کے اندر موجود ہے مقاتل کی، لیکن صحیح طریقے سے روایت ثابت نہیں ہے کہ شمر ملعون جو ہے وہ ان کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھا تھا۔ آپ کتنے علماء پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کوئی ان کے تمام علماء کے خلاف ایک محاذ باندھ لے اور کہا کہ نہیں ان اوتھینٹک ہے، دیکھیے آقا خوئی نے کہا ہے غیر معتبر چیز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ لیکن روایت یہ پھر بھی پڑھی جاتی، کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء نے پڑھنے کی اجازت دی، مصائب کے لحاظ سے لوگ روئیں اور گریا کر کے امام کو یاد کریں، اور اگر روایت کمزور بھی ہے ضعیف بھی ہے تو اس کو پڑھنے کی علماء نے اجازت دی اس وجہ سے۔ تو کوئی شخص یہ مہم بنا لے اس کو اور اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لے کہ نہیں میں ہر صورت میں غیر معتبر چیز جو کسی نے ایک دفعہ کہہ دیے کسی عالم نے تو میں اس کو پیش ہی نہیں کرنے دوں گا، تو یہ فساد معاشرے کے اندر اس سے پیدا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں باقاعدہ لحوف جو کہ معتبر مقاتل میں سے ابن طاؤس نے جس کو لکھا ہے، ہمارے کتنا معتبر نام ہے ابن طاؤس، ان کی جو کتاب لحوف ہے اس کا پوری کتاب کی تمام روایت کا کوئی سلسلہ سند ہی نہیں، لیکن یہ معتبر مقاتل میں سے شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ دیگر کتابوں سے بہرحال اس کی تائید ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ اس کو روایت کی شکل میں نہیں لکھا بلکہ خاص ترتیب سے پورے واقعے کربلا کو جس طرح انسان بیان کرتا ہوا جاتا ہے اس طرح سے لحوف کو تحریر کیا۔ تو وہ اعتراض ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے پھر کہ انہوں نے تو اس میں بھی کوئی سلسلہ سند نہیں ہے، لحوف کی کتاب کا بھی کوئی سلسلہ سند نہیں، لیکن یہ معتبر مقاتل میں سے اور ان کو بالکل مردود قرار دیا ہوا ان کی کتاب کو، تو علماء کہتے ہیں پھر اس طرح کی یہ دو رنگی والی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور بڑے علماء کے لیول کے اوپر تو خیر یہ بات بھی نہیں ہے، یہ ذرا نچلی سطح کے اوپر بہت سے جذباتی افراد وہ اس قسم کی باتیں لے کر آتے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ترجیح المراسیل علی المرسل بدون مرجع یہ بالکل قبیح ہوتا ہے، یعنی ایک مرسل روایت کو تو آپ ترجیح دے رہے ہیں دوسری مرسل روایت پہ جبکہ کوئی اس کے لیے کوئی خاص دلیل بھی آپ کے پاس موجود نہ ہو، لیکن ذرا ٹپیکل بات ہو جائے گی، چھوڑیے اس کو۔ اچھا اب اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے، اب یہ ذرا اب آپ لوگ جو سنتی ہیں نا یہ تو تھوڑی سی اب تک خوش باتیں تھیں، اب تھوڑی سی اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ ذرا آپ کو واضح ہوگا۔ آخر امام کی کس بیٹی سے حضرت قاسم کا عقد ہوا تھا؟ اگر آپ کہیں हजरत फातिमा बिनतुल हुसैन, जिन्हें फातिमा कुबरा कहा जाता है, वो तो भाभी थी उनकी। देखिए, सबसे पहले तो ये इसमें बड़ा इख्तलाफ ये आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिर बेटियां कितनी थी, ये इख्तलाफ है। बास कहते हैं दो थी, हजरत सकीना और हजरत फातिमा बिनतुल हुसैन, और शेख मुफीद और अल्लामा तबरसी का ये नजरिया है कि दो थी। बास कहते हैं जैसे अल्लामा इब्ने शहरे आशोब के तीन थी। देखिए, एक तो करबला में अलबत्ता उलामा कहते हैं दो ही बेटियां थी, लेकिन ये भी मामला इख्तलाफी, अभी आगे चलकर बात आएगी। फातिमा कुबरा या फातिमा बिनतुल हुसैन, वो तो 100% उनका अहद हसन मुसन्ना से हुआ था, जो कि इमाम हसन के बेटे थे और करबला में मौजूद थे। उनसे तो मुमकिन नहीं है कि हजरत कासिम का अहद हुआ हो, क्योंकि वो तो वाकई भाभी थी। अच्छा, हसन मुसन्ना भाई थे हजरत कासिम के, फातिमा बिनतुल हुसैन के शौहर थे, इमाम हुसैन के दामाद थे। तो अच्छा, फिर उन्हीं की औलाद औलादें थी अब्दुल्ला महज, और उनकी औलादों में फिर मोहम्मद नफसे जकिया और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला, जिन्होंने अब्बासी जो थे हुक्मरान उनके खिलाफ कयाम किया था। यानी इमाम हसन मुश्तबा का जो, वो देखें अगर उनके बाद की औलादों का, तो उसके अंदर हसन मुसन्ना की जो औलादें हैं, देखिए हसन मुसन्ना की जो औलाद है, ये सादात तबा तबाई का सिलसिला हसन मुसन्ना की औलादों से शुरू हुआ है। ये जो सादात तबा तबाई हैं, ये हसन मुसन्ना की औलाद से, और अब्दुल्ला शाह गाजी जो हमारे यहां क्लिफ्टन पे जिनका मजार है, ये खुद हसन मुसन्ना की औलाद में से। तो हसन मुसन्ना से उन, यानी वो फातिमा कुबरा की शादी हुई थी, वो तो बिल्कुल एक अलहदा वो है। अच्छा, बाज उलामा कहते हैं कि यहां पर एक इश्तबा हो गया है, तारीखी इश्तबा। वो ये है कि हसन मुसन्ना की फातिमा कुबरा से शादी हुई थी, लेकिन ये शादी कब हुई थी? ये वाकई करबला से शायद चंद महीने, 1-2-3 महीने के अंदर अंदर हुई। यानी रिवायात में मिलता है कि इमाम हुसैन की शहादत वाले सन में, वो तो 61 हिजरी अभी तो शुरू ही हुआ था कि शहादत हो गई, तो इसका मतलब यह है कि मुहर्रम शुरू होने से 1-2-3 महीने पहले की बात होगी। हसन मुसन्ना की फातिमा बिनतुल हुसैन के साथ शादी हुई, और ये रोजे आशूर, ये जोड़ा करबला के अंदर मौजूद था। एक शादीशुदा जोड़ा और था वहाबे कलबी का, नया शादीशुदा वो कुर्बानी के लिए मौजूद हुआ, और ये दूसरा शादीशुदा जोड़ा जो मौजूद था वहां पर। उलामा कहते हैं शादी इतनी करीब वाकई हुई है वाकई करबला से, कि बहुत सारे अफराद को तारीख में इश्तबा हो गया और हसन मुसन्ना के बजाय कासिम का नाम नकल कर दिया गया, जबकि शादी उनके भाई से हुई थी। तो ये कुछ उलामा कहते हैं कि इश्तबा शायद ये है। अच्छा, दूसरी बेटी जो वाकई करबला में मिलता है, ज्यादा उलामा का रुझान है कि दो ही बेटियां मसलन वहां पर थी। दूसरी बेटी थी हजरत सकीना मसलन, कुछ उलामा ये कहते हैं वो तो शादी के काबिल ही नहीं थी और सिने अज़दवाज को नहीं पहुंची थी अभी, लेकिन इसमें भी इख्तलाफ है, अभी आगे चलकर आएगा। तो आगे अबुल हसन शेरानी ये फरमाते हैं कि इमाम की दो ही बेटियां थीं, फातिमा बिनतुल हुसैन और सकीना, और अल्लामा अबुल हसन शेरानी खुद इस बात के कायल हैं कि कासिम की शादी इमाम की एक बेटी से हुई थी। तो फातिमा बिनतुल हुसैन तो हसन मुसन्ना की बेटी हो गई, अब बची हजरत सकीना। तो वो उनके मुताबिक यह है कि इनकी हजरत सकीना से शादी हुई। अच्छा, लेकिन अभी तो अब फिर आप कहेंगे कि फिर वो कौन थी कि जो कि कैदखाने में शहादत हो गई उनकी, अभी अभी सुनिए। अच्छा, अबुल हसन शेरानी कहते हैं कि दो ही बेटियां थी। अल्लामा इब्ने शहरे आशोब, जिनकी किताब मनाकिब है, हमारे बड़े उलामा में इनका शुमार होता है, वो फरमाते हैं इमाम की तीन बेटियां थी। अल्लामा अरबली, ये भी हमारे बड़े ऑथेंटिक उलामा में शुमार होते हैं, इनकी किताब कशफुल गुम्मा है, कशफुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, उसमें उन्होंने कहा है कि इमाम की चार बेटियां थी। अलबत्ता नाम तीन बेटियों के नकल किए, सकीना, फातिमा बिनतुल हुसैन और जैनब नाम की एक बेटी, जैनब बिनतुल हुसैन। तो चार बेटियां थी। फिर मुल्ला साले माजंदरानी, मुल्ला मेहदी माजंदरानी, जिनकी किताब मौलियुस सिप्तैन है, उसमें भी उन्होंने इमाम हुसैन की चार बेटियों ही का तस्करा किया। अच्छा, कुछ उलमा ने एक जगह पर और कुछ जगहों पे और वही आम लोगों के अंदर ज्यादा मशहूर है कि इमाम की एक बेटी जुबैदा के साथ जो है वो हजरत कासिम की शादी हुई थी, लेकिन ये इतनी ऑथेंटिक बात नहीं। अच्छा, अब देखिए तारीख के अंदर कितने मसाइल हैं, हर तरफ आपको बड़े बड़े उलमा मिलेंगे और ये खुद आइम्मा की तमाम औलादों के मुतालिक है कि उन्हें बेटे कितने थे और बेटियां कितनी थी। आपको याद होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक वाक्य वो मिलता है जिसमें उन्होंने जब उनके बेटे ने सूरह अलहम्द एक मौलिम ने आकर खत्म कराई तो इमाम ने उनका मुंह मोतियों से भर दिया। वो कौन से बेटे थे? उनका नाम था जाफर, लेकिन इमाम हुसैन के किसी बेटे जाफर का नाम इतना मारूफ नहीं लोगों में। तारीख के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीजें। तो हजरत रुकैया, अगर फातिमा बिनतुल हुसैन और सकीना थी तो फिर हजरत रुकैया कौन है? अच्छा, अब देखिए, अब आपके सामने दो चीजें मैं पेश कर रहा हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि तारीख के अंदर आम लोगों को बोलने में कितनी एहतियात करनी चाहिए और कोई एक यकतरफा नजरिया नहीं बनाना चाहिए। हजरत रुकैया 4 साल की जिनकी उम्र थी और जिनका कैदखाने में इंतकाल हुआ था। कुछ उलमा का यह कहना है कि शहीद मुताहरी हजरत रुकैया को तहरीफात आशूरा में से समझते हैं। वो कहते नहीं, इस नाम की इमाम की कोई बेटी नहीं थी। अलबत्ता कुछ लोगों ने डिफेंड किया है शहीद मुताहरी को कि नहीं, उनका ये नजरिया नहीं था बल्कि वो किसी और की बात पेश कर रहे थे। इसी तरीके से आगा रिशाहरी के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो भी हजरत रुकैया के कायल नहीं। इसके अलावा मोहसिन अमीन आमिली ये भी इनकार करते थे कि हजरत रुकैया नाम की इमाम की कोई बेटी नहीं थी। इसी तरीके से आयतुल्ला मरशी नजफी जैसा इल्मुल अंसाब का माहिर, उन्होंने तो अपनी किताब यानी बाकायदा उनका नकल किया गया उनका कौल कि अगरचे काबिल एतबार मदारिक और मनाबे बेटी रुकैया के बारे में खामोश है, यानी काबिल एतबार किताबों में उनका तस्करा नहीं है, लेकिन इस कदर शोहरत के पेश नजर उनके वजूद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यानी इतनी ज्यादा मशहूर है बात ही हजरत रुकैया के मुतालिक कि हम कोई एक नजरिया नहीं बना सकते कि अगरचे काबिल एतबार मदारिक में उनका कोई तस्करा नहीं। देखिए, उनके मुतालिक भी ये बात हो रही थी ना कि जो काबिल एतबार किताबें हैं उससे ताईद नहीं होती हजरत कासिम की, लेकिन शोहरत रखती। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि उनकी बेटी रुकैया के मुतालिक भी काबिल एतबार मदारिक में तस्करा नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा शोहरत है कि इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जवाद मुहद्दिसी, ये तारीख के बड़े शिया उलामा में करार दिए जाते हैं, जवाद मुहद्दिसी ने भी इनकार किया हजरत रुकैया नाम की कोई बेटी नहीं थी इमाम की। इसी तरीके से आयतुल्ला जवाद आमली ने भी इनकार किया। ये ग्रुप सुन लिया आपने, कितने बड़े बड़े उलमा और नाम है। अब दूसरा ग्रुप आ जाइए, आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी कहते हैं हजरत रुकैया मौजूद थी, इमाम की एक बेटी नहीं हजरत रुकैया, ये कायल है। आयतुल्ला नूरी हमदानी ये कायल है। आयतुल्ला शेख जवाद तबरेजी ये कायल है, और बल्कि ये तो कहते थे कि वाजिब है हजरत रुकैया की जहां जरी है उसका मुकम्मल एहतराम उसी तरीके से वाजिब है, चाहे एहतमाली क्यों ना हो उसका, वो भी हजरत रुकैया के कायल थे। इसी तरीके से आयतुल्ला अली हुसैनिया मिलानी ये कायल हैं कि हजरत रुकैया थी, इमाम की बेटी थी। आयतुल्ला साफिया गुलपायगानी कायल हैं। इसके अलावा आयतुल्ला गुरगानी कायल हैं, और इसके अलावा आयतुल्ला हुसैन मज़ाहिरी कायल हैं, और आयतुल्ला सादिक रूहानी कायल हैं, और आयतुल्ला सिस्तानी भी इसके कायल हैं कि हजरत रुकैया थी। तो आपने देखा कि दोनों तरफ कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने बड़े बड़े उलमा हैं, सबके पास अपने अपने दलाइल हैं। पूरी पूरी लोगों ने दलाइल पे किताबें लिखी हैं कि हजरत रुकैया नहीं थी, और जवाब में 50-50 दलीलें उलमा ने लिखी हैं कि हजरत रुकैया थी। अब कोई कोई एक नजरिया बना ले इसमें, मसलन कहे कि नहीं मुझे तो मसलन शहीद मुतहरी की बात जो है ना वो है बस हजरत रुकैया नहीं थी, और रोजाना मजालिस के अंदर उसको प्रूफ करना शुरू कर दे और कहे कि ये बिल्कुल इमाम के ऊपर एक किरदार कशी है कि इमाम से एक बेटी को मंसूब किया जाए जबकि वो वजूद ही नहीं रखती थी मसलन। तो ये तमाम चीजें क्या होंगी कि एक फितना और फसाद माशरे के अंदर फैलेगा कि दूसरी तरफ भी उलमा उसके कायल रहे। तो ये तरीकेकार किसी भी जाकिर और जाकिरा को के इख्तलाफी मसाइल के अंदर वो पड़े, ये उसको उसके लिए मुनासिब नहीं। अच्छा, अब रह गई थी हजरत सकीना, उनके मुतालिक ये बात कही अब कही जाती है कि जनाब वो तो बहुत उस वक्त छोटी उम्र की थी, उनसे तो शादी मुमकिन ही नहीं है। तो अब्दुल रजाक अल मुकर्रम, जिनकी किताबें मोतवर मकातिल के अंदर से शुमार की जाती, जिनके मकतल मोतबर और दीगर किताबें भी उनकी, उन्होंने कहा है कि हजरत सकीना की उम्र 13 साल थी और काबिल अजदवाज थी। खैर, अब्दुल रजाक अल मुकर्रम खुद इस अक्त के कायल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उम्र लिखी है हजरत सकीना की वो 13 साल है, और कहा कि शादी के काबिल थी। और पूरी एक किताब अस सैयदा सुकैना, सकीना भी कहा जाता है, सुकैना भी, इमाम हुसैन की इस बेटी पे पूरी एक किताब अब्दुल रजाक अल मुकर्रम ने लिखी है, और उसमें भी जो उम्र है उनकी वो 13 साल करार दी। और आयतुल्ला सादिक रूहानी, जिनकी अजबाबतिल मसाइल के नाम से जो किताब है उसमें तारीखी इस्तफ्तात भी हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया कि हजरत सकीना की उम्र कितनी थी, तो उन्होंने 18 साल नकल की। अब देखा आपने तारीख के अंदर कितनी इस तरह की बातें। तो अब शेख तुरही या जो ज्यादा उलमा ने जिस रिवायत को पेश किया उसमें इमाम की किसी बेटी का नाम नहीं है कि कासिम, बस रिवायत में यह कि इमाम ने अपनी एक बेटी का अक्द हजरत कासिम से किया, और यह नहीं है कि हजरत फातिमा कुबरा से किया था, जो फौरन लोग कहते हैं कि फातिमा कुबरा थी वो तो उनकी भाभी थी, तो भाभी से कैसे हो सकता है। तो उलमा ने यही बात कही है वो जो इस बात की हिमायत में कि इमाम, जो ज्यादा सही रिवायत है वो ये है कि उसमें बेटी का नाम तस्करा नहीं है रिवायत के अंदर, बल्कि ये रिवायत कहे कि इमाम ने अपनी एक बेटी का हजरत कासिम से किया और नाम नहीं बताया कि कौन सी थी। अच्छा, जो अभी आगा आयतुल्ला जहनी तहरानी की किताब मदीने से मदीने तक, उसमें फातिमा का तस्करा आया, तो उस पर भी उलमा ने कहा कि इमाम को अपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हजरत शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद भेजिए ना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने ज्यादा अजीज नाम थे, अपने सारे बेटों के नाम अली रखे थे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर, ये सब सब बाद में इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको इस तरह से कहा जाने लगा, फातिमा सुगरा और कुबरा और वुस्ता वगैरह इस तरह के जो नाम हैं, क्योंकि सारी बेटियों के नाम फातिमा रखे थे। तो इमाम की कितनी बेटियां थीं ये खुद एक इख्तलाफी बात है, आपने सुना दो थीं, तीन थीं, चार थीं, अल्लामा रबानी ने लिखा जैसे कि कुछ उलमा इसके भी कायल हैं कि 5 थीं और कुछ 7 तक भी लेकर जाते हैं। और इमाम ने क्योंकि सभी के नाम फातिमा रखे थे, तो अब रिवायत में जो फातिमा है तो कौन सी वाली फातिमा, हो सकता है कि हसन मुसन्ना वाली फातिमा ना हो बल्कि कोई और बेटी फातिमा हो इमाम की, जिनका रिवायत के अंदर तस्करा नहीं आया है। तो इस एहतमाल को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता कि फातिमा नाम ही की किसी बेटी के साथ अक्द हुआ था, लेकिन यकीनन वो हजरत हसन मुसन्ना की जौजा नहीं हो सकती, वो तो भाभी थी उनकी, उनसे कैसे अक्द हो सकता था, तो कोई और फातिमा नाम की कोई बेटी इमाम के साथ। अब कुछ उलमा ने यह भी कहा कि इमाम की जो दो बेटियां थीं उसमें जो जो सुकैना और रुकैया भी गोया एक लिहाज से, क्योंकि इमाम को बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत थी, उनके दिल का सुकून थी, तो वहां पर सुकैना कहा जाता था। और उसके बाद जब वो जिंदाने शाम में आई और हर वक्त रोती रहती थी तो रोने वाली को रुकैया कहा जाता है, तो वहां पर कहां है भाई वो रोने वाली, तलाश करो उसको, तो वो रुकैया कह के पुकारा जाने लगा, वरना सुकैना और रुकैया एक ही चीज शख्सियत के नाम है। अब बड़ा तारीख के अंदर इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अल्लामा अरबली ने कशफुल गुम्मा में 4 बेटियां नकल की हैं, और मौलिक सिबतैन के अंदर भी जो है वो 4 बेटियों का तस्करा है, तो इस इम्कान के पेश नजर उलमा ने इसको जायज करार दिया है इसको पढ़ने के लिए। और अहले सुन्नत उलमा में भी मोहम्मद इब्ने तलहा शाफई ने इनकी किताब मतालिब उस्सौल है उसमें भी 4 बेटियों का तस्करा किया है। अच्छा, एक और बेटी भी है जैनब बिनतुल हुसैन, उनका भी बड़े बड़े इब्ने शहरे आशोब, मोहसिन अमीन आमिली ने तस्करा किया है, इसका मतलब है कि वो भी अलग से कोई बेटी थी। और एक और बेटी का तस्करा भी तारीख में है, खौला बिनतुल हुसैन, इनका बालबिक जो लबनान के अंदर एक इलाका है वहां पर बाकायदा इनका जो रोजा भी है वो इमाम हुसैन की बेटी के लिहाज से कुछ ने इसको भी नकल किया है, और बाकायदा रहबर मौजम ने उस रोजे को बालबक में बनवाया भी है लबनान के अंदर, और बड़ा पुरशिको उनका वो है, और हिजबुल्ला वगैरह की जो दुआ इफ्तिता जो पढ़ते हैं वो उसी उनके रोजे में जाकर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो चलें उतनी ऑथेंटिक नहीं है, ज्यादा काबिल एतबार करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन खौला नाम की भी एक बेटी थी। तो बहुत सारी इस तरह की बातें तारीख के अंदर है। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि हजरत कासिम उमर के एतबार से बालिग नहीं थे, तो कैसे मुमकिन है कि उनकी शादी की बात जो है वो हुई हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हजरत कासिम की उम्र के मुतालिक इख्तलाफ है, और खुद इमाम हसन की शहादत की जो सन है उसमें भी इख्तलाफ है। मसलन शेख तूसी ने 49 हिजरी लिखा है, इब्न कुतैबा ने 51 हिजरी लिखा है, और अबुल फरज इस्फहानी उन्होंने 50 हिजरी लिखा है, और कुछ उलमा ने 47 हिजरी भी। बहरहाल हजरत कासिम की उम्र जो है कुछ रिवायात में तो ये है कि 4 साल के थे, लेकिन वो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं कि 4 साल का बच्चा जो जाके और वहां जाके मैदान जंग में मुकाबला कर रहा हो, तो वो तो इतनी काबिल एतना नहीं है। लेकिन 11 साल, 13 साल और 14 साल भी रिवायात के अंदर आई। अच्छा, लेकिन ये बुलूग के एतबार से, बुलूग की जो उम्र है उम्र के एतबार से, देखिए उम्र जब 15 साल कोई भी लड़का अपनी उम्र को मुकम्मल कर लेता है तो उम्र के एतबार से बालिग हो जाता है, लेकिन बहुत सारी दीगर अलामत बुलूग से मुमकिन है वो उन अलामत बुलूग की वजह से वो पहले बालिग हो जाए। आज भी लड़के 12 साल 13 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो उस जमाने में अरबों के माशरे के अंदर जबकि उनकी जिस्मानी साख, उस जमाने की जो हालत होती थी कि हजरत कासिम ने मसलन इतने पहलवानों का मुकाबला किया रिवायत में, इतने लोगों को वासिले जहन्नुम किया, तो ये उस जमाने की फिजिक ऐसी होती थी कि वो उम्र के एतबार से नहीं बल्कि दीगर अलामत बुलूग के एतबार से जल्दी बालिग हो जाते थे। यानी इस बात का इम्कान मौजूद है, एक तो उम्र की शर्त होती है और उम्र की शर्त से भी पहले लड़के जो है वो बालिग हो सकते हैं। अच्छा, लड़कियां जो हैं, जैसे कि मिलता है कि लड़कियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती, उस जमाने में देखिए ऐसी काठी ऐसी फिजिक हुआ करती थी लड़कियों की कि 9 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की के मुतालिक आप सुनती हैं। तो वहां की आबो हवा और उसके मुताबिक और उनके यहाँ औलादे भी जल्दी जल्दी हो जाती थी। आजकल की 9 साल की बच्चियों को आप देखें मुमकिन ही नहीं लगता कि ये शादी के काबिल हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या अकद निकाह के लिए, वो उलामा जवाब ये देते हैं जो उसके कायल हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो शादी की उम्र नहीं थी, तो क्या अकद निकाह के लिए बुलूग शर्त है? नाबालिग की भी बहुत सारी मसलियतों के तहत शादी हो सकती है। शादी में हमेशा अज़दवाजी फायदा जो है वो मकसूद नहीं होता है। बाज़ औक़ात लोग ना बच्चियां एडॉप्ट करते हैं उनकी ताकि हम उनके बालिग होने के बाद भी उनके साथ महरमियत कायम रहे, तो कुछ अकद महरमियत वगैरह भी पढ़े जाते हैं जिसका अभी मौका नहीं है बयान करने का, लेकिन ताकि उनमें महरमियत कायम हो जाए कुछ इस तरह की उसके अंदर शरई हीले किए जाते हैं कि जिससे वो बाद में भी इस शख्स की जो है वो महरम बन जाए। तो सिर्फ जरूरी नहीं है, और बाज़ मराजे तो यहां तक कायल हैं, जैसे आयतुल्ला सादिक रूहानी, उन्होंने तो आयतुल्ला सादिक रूहानी ने अपने फतवा में कहा है कि हजरत कासिम के इस अक्त को उस वसीयत के तौर पर कबूल करने में हर्ज नहीं है कि जो कि इमाम हसन ने की थी, उनकी वसीयत थी और वसीयत के मुताबिक जो है इमाम ने जो है वो अमल किया है, तो उस लिहाज से वसीयत को नाफिज करने के लिहाज से इसके अंदर कोई अमर माने नहीं। ये नाबालिग का अक्द भी हो सकता है, यानी जो बच्चे का जो वली है वो उसको वसीयत की वजह से इसको नाफिज कर सकता है जो भी वसी। अच्छा, कुछ लोग इसमें एक फिकही इश्काल लेकर आते हैं कि जवाहिरुल कलाम जो किताब है हमारी उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि कोई जो वसी है वो नाबालिग, जिसको वसीयत की गई हो वो नाबालिग का अक्द नहीं कर सकता। मसलन इमाम हुसैन को वसीयत थी, तो इमाम हुसैन, यानी चलें ये तो एक अलग से फिकही मसले के तौर पर भी है कि अगर वसीयत करके कोई जाए तो वसी जो है नाबालिग का अक्द नहीं कर सकता। तो इस पे भी उलमा ने बात कही और कहा ये बात अगरचे अख्तिलाफी है, लेकिन वो आयतुल्ला खोई ने मुस्तनद उरवतुल वुस्का के अंदर बाकायदा इस मोहम्मद इब्ने मुस्लिम और अबू बसीर की जो सही रिवायत है उसमें साबित किया है कि वसी भी जो है जिसको वसीयत करके गए हों वो भी नाबालिग का अक्द कर सकता है। और इमाम के पास तो विलायत मुतलका थी। आजकल लोग तो जाहिर है उसके भी कायल हैं कि बहुत से उलमा के नजदीक फकीह के पास भी विलायत मुतलका होती, कुछ के नजदीक ये है, तो इमाम के पास तो बदरजे औला विलायत मुतलका थी। और हमारा एक ये भी नजरिया है कि इमाम के शहादत के बाद या दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी विलायत साकित नहीं होती, ये भी उलमा का नजरिया है। तो और फिर वसीयत भी करके गए थे, तो इमाम के पास तो अलग से भी स्पेशल किस्म की विलायत मुतलका के तहत अथॉरिटी थी कि वो निकाह कर सकते हैं। तो लिहाजा और आम शख्स के लिए भी जो वसी के लिए के लिहाज से इजाजत है और मराजे ने इजाजत दी है तो फिर उसमें भी मुमकिन है। इस लिहाज से इसकी जो तफसील है तहरीरुल वसीला में इमाम खुमैनी ने भी इन मसाइल के ऊपर लिखा है कि वसी और जो नाबालिग की तजवीज के अहकाम और मिनाजुस सालेहीन वगैरह जो किताबें उलमा की, उसमें भी मौजूद है। अब उलम एक एतराज ये पेश किया जा सक जाता है और उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज भी लोग कर थोड़ा सा कर देते हैं कि इतनी मुसीबत के दिन कोई कैसे शादी के मुतालिक सोच सकता है। इतना मुसीबत वाला दिन था आशूरा, कहां आशूरे का रोज, इतनी ज्यादा शहादतें, उसमें कहां शादी, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। तो देखिए कुछ उलमा तो जो इस बात के कायल हैं कि इमाम की वसीयत पर अमल करना जरूरी था, जैसे आयतुल्ला सादिक रूहानी, तो उस लिहाज से तो चाहे आशूरे का रोज़ है कुछ हो, वो एक वाजिब वाला हुक्म था, उसको पूरा किया गया। और एक लाइन का अक्त पढ़ने के अंदर तो कोई ऐसा वक्त, लोग कहते हैं इतना वक्त शादी में लग जाता है, उसमें इतना वक्त ही कहां था इमाम के पास, तो हमारी तरह की शादियां तो नहीं होती थी उस जमाने में। तो मासूमीन के घराने या की जो शादियां, उसको अपनी शादियों पर कयास नहीं करना चाहिए। खानदान इसमत तो तहारत की शादियां वो बहुत सादा तरीके से होती थी। तो वो उलमा जो कहते हैं कि ये बात बहुत बईद है और खिलाफ अकल है कि आशूर के रोज कैसे ये हुआ होगा, तो आयतुल्ला जो है अबुल हसन शेरानी, इन्होंने लिखा है कि ये बात कहना कि ये बहुत बईद है, ये सही नहीं। वजह इसकी है कि हम मासूम की जो कामों की मसलहतें हैं उससे हम वाकिफ नहीं। और कुछ उलमा ने मसलहत ये भी बताई है कि हजरत कासिम के इमाम ये चाहते थे कि कासिम अक्द की फजीलत को हासिल करके दुनिया से जाएं, क्योंकि बेशादीशुदा ये कुदरत रखते हुए या किसी भी एतबार से इंसान बेशादीशुदा जाए तो उसकी फजीलत जरा कम है। तो और उलमा ने यह भी कहा कि एक रिवायत के अंदर यह भी आया कि नेक शख्स जो होगा वो आखरत में अपनी जौजा सालिहा के साथ मुलहक किया जाएगा, यानी जन्नत में वही उसकी जौजा बनेगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन के इस एहसान को कि उनके बेटे ने अपनी जान इमाम हुसैन पर कुर्बान की, अपनी बेटी से जो इस वजह से तजवीज की, कि इस एहसान के एहतराम में इस अमल को इमाम ने अंजाम दिया, तो उसकी बहुत सी मसलियतें हो सकती हैं। और बहुत से मैंने जाकिरीन वगैरह सुना है, अलबत्ता ये कि वो कोई आलिमों के लिहाज से बात नहीं है और मुमकिन है, उसमें मैंने इतना गौर भी नहीं किया कि उस जमाने में यह होता था कि अगर बेशादीशुदा या कंवारी लड़की होती थी उसको कनीजी में लिया जाता था। तो इमाम ने बहुत सारे इकदाम ऐसे किए थे कि बाद तक ये तमाम चीजें ना हो पाए, लेकिन इसका कोई वैसा मेरे पास ऑथेंटिक, या मैंने इस पर गौर इतना नहीं किया ना किसी अभी आलिम से पूछा कि इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन बहरहाल इमाम के कामों की मसलियतों से इमाम खुद वाकिफ हैं और हम उन पर यह नहीं कह सकते ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन्होंने ऐसा किया हो। और फिर बहुत सी रिवायतों के अंदर लोग कहते हैं कि उरूसी का जोड़ा लेकर आओ, मसलन जैसे कि अभी आयतुल्ला ज़हनी तहरानी ने भी लिखा है कि क्या कासिम के लिए नए कपड़े मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कहा कि अच्छा भाई हसन की अमानतों वाला संदूक लेकर आओ, और फिर इमाम हसन का अमामा और कबा निकाल के कासिम को पहनाए थे। तो लोग ये कहते हैं कि बहरहाल इमाम हसन ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर ये, हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे तरह के ब्रांडेड शेरवानी और उस टाइप की कोई चीजों का एहतमाम होगा, नहीं, इमाम हसन का संदूक निकाल के उनमें से अपने वालिद का उनके जो लिबास पहनाया, वो रिवायत के अंदर, अगर हम उस रिवायत को सही भी माने तो अच्छा देखिए लोग कहते हैं भाई मरने से पहले भी शहीद होने जा रहे हैं, इमाम को पता है शहीद हो जाएंगे, फिर नए कपड़ों वगैरह का एहतमाम क्यों किया जा रहा है। तो बाकायदा अमालिया शेख तूसी के अंदर भी है, मजलिस नंबर 14 हदीस नंबर 41 में, और बिहारुल अनवार की 43वीं जिल्द के अंदर भी अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि हजरत जहरा की जब शहादत का वक्त आया था तो उन्होंने अपने लिए नए लिबास को तलब किया था। तो खानदान अहले बैत के लिए तो मौत शहद से ज्यादा शीरी है, उसके लिए अगर नया लिबास भी तलब करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। यानी हमें अपने ऊपर कयास नहीं करना चाहिए कि हमारे यहां तो सफे अज़ा और सफ़े मातम बिछ जाए, अगर थोड़ा सा भी कोई बीमार हो जाए और इंतकाल के करीब आ जाए तो अपने ऊपर कयास करके हम लोग बाज़ औक़ात एतराज़ कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ ने कहा कि भाई अगर हजरत कासिम की कोई जौजा होती तो बात की तफसीलात क्यों नहीं कि वो कहां गई, क्या हुआ उनके साथ। तो उलमा ये कहते हैं देखिए आइम्मा की जो कितनी अजवाज थी इसकी भी तफसील लोगों को सही तौर पर पता नहीं, खुद हजरत शहरबानो का तारीख के अंदर नहीं पता कि वो कहां गई, क्या हुआ, और आइम्मा की औलादें कितनी थीं, आइम्मा की औलादों ने किन जगहों पर शादियां की, खुद अमीरुल मोमिनीन के 18 बेटे थे, उन सब की शादियां कहां कहां हुई, उनकी औलादें कहां हैं, उन लोगों के कबूर कहां हैं, खुद आइम्मा की ससुराली जो होते थे उनके मुतालिक तफसीलात नहीं हैं, अमीर उल मोमिनीन के भाई एक तालिब थे, अगर आप तफसील निकालने बैठे तो चंद लाइनों या चंद सफात से ज्यादा उनकी तफसील नहीं मिलती तालिब की। तो अगर किसी का तस्करा ना मिले बाद में तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, कि वरना पता होता कि भाई कौन थी कहाँ गई, बहुत सारी तफासिल तारीख के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है, एहतमाल मौजूद है, तो लिहाजा इस वजह से इसको उलमा ने पढ़ने की इजाजत दी। अच्छा, कुछ लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि अगर आप पूरी रिवायतें पढ़ें तो हजरत कासिम का अपनी जौजा से एक मुकालिमा है, एक मुकालिमा, और शौहर और बीवी में जिस तरीके से बात होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूं मैदान जंग में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको शहीद हो गए तो मैं आपको मैदान हशर में कैसे पहचानूंगी, तलाश करूंगी, तो हजरत कासिम ने अपने लिबास का एक टुकड़ा फाड़ के उनको दिया कि तुम इसके जरिए मुझसे पहचान। तो लोग कहते हैं कि भाई कैसे मुमकिन है कि मैदान कारजार के अंदर जा रहे हों और शौहर बीवी में इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये देखिए, हम अपने मुताबिक ये चीज सोच रहे हैं। हजरत जुहैर इब्ने कैन जो इमाम के सहाबी थे, ये आशूर के रोज मजाक कर रहे थे, कोई कह के भाई ये कैसे मुमकिन है, यहां लाशों पे लाशें गिर रही हैं और जुहैर इब्ने कैन मजाक कर रहे हैं। बाद सहाबा ने एतराज भी किया था इमाम के साथियों ने, तो जुहैर ने कहा था तुमको पता है कि मैं एक संजीदा शख्स हूं, लेकिन आज यानी गोया जन्नत को अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो अब मैं उस खुशी में जो है वो मजाक कर रहे हैं। बल्कि एक जुमला है, अब इस पे भी ऐसे अफराद को जो ये एतराज करते हैं कि उन्होंने शौहर और बीवी ने इस किस्म की बात आपस में जो कर रहे थे, तो ये तो मौका इस किस्म की बातों का नहीं था, तो जुहैर की इन बात को क्या कहेंगे, जो किताब लहूफ के अंदर जो मोतबर तरीन मकातिल में से कि उन्होंने कहा कि जुहैर ने कि इधर मेरे गर्दन पर तलवार चलेगी और उधर मेरा हूरे ऐन के साथ मुआनिका होगा, सुम्मा नुआनिकुल हूरल ऐन, यानी इधर मेरी गर्दन पर तलवार चलेगी उधर। अब लोग कोई कह के भाई ये क्या बात हुई, ये कोई ये मौका इस किस्म की बातें करने का है जुहैर, कि मैदाने कारजार हैं या लाशों पे लाशें जो है गिर रही हैं और उसमें जो है आप इस किस्म की बातें, हूरों का तस्करा, उनसे मुआनिका का तस्करा कर रहे हैं, तो लहूफ जो कि ऑथेंटिक है, तो इस किस्म के एतराजात, इसी भौंडे किस्म के एतराजात ये जो है वो नहीं करने चाहिए। फिर वहां भी कलबी की जौजा का अगर मुकालिमा पढ़े, इमाम के पास गई थी और क्या क्या उनसे बातें हुई थी वो भी अगर बयान करने बैठे, तो बहरहाल देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि रिवायत का मुरसल होना या उसका सनद ना होना ये उसके झूठा होने की दलील नहीं, इससे पहले भी बात आई है। और बाकायदा अगर कोई एतराज करे कि भाई ये जो शेख तुरही हैं इनकी किताब के अंदर तो मुरसल रिवायतें हैं, तो आयतुल्ला सादिक रूहानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ठीक है इन किताबों के अंदर मुरसल रिवायतें हैं, लेकिन इससे इनका एतबार साकित नहीं होता है, ले अदम एतबार इत्तसाल सनदी फिल अखबार तारीखिया, कहते हैं कि तारीख की जो बातें हैं उसके अंदर इत्तसाल सनद दरकार नहीं होता तारीख की बातों, और शेख तुरही की तो बहुत जलील कदर, बहुत अजीमुल मरतबत शख्सियत उन्होंने इस लिहाज से करार दिया है। तो अब ये तो हो गया कि बहुत सारे उलमा के नजदीक साबित नहीं है मोतबर रिवायत से अकद कासिम, लेकिन इस पर भी आपने बातें सुनी, लेकिन किताब का हवाला देकर इस अक्त को बयान करने की इजाजत है। नहीं पहले, हाँ नहीं, बस को छोड़िए, एक और बात, किन उलमा और मराजे के नजदीक अकद कासिम को मजालिस में पढ़ने की इजाजत है? आयतुल्ला खुई, आयतुल्ला खुई से भी यही बात पूछी गई है, और इसके अंदर हजरत कासिम के अक्त को हजरत सकीना के साथ या सुकैना के साथ जो है सवाल ये पूछा गया है उनसे, तो आगे खोई ने कहा कि 100% यकीन के तौर पर तो इसको नकल करने की इजाजत नहीं कि 100% यह अक्द हुआ था, लेकिन बे उनवान हिकाया अन किताबिन और शख्सिन फलाबासब है, लेकिन अगर किसी किताब का हवाला देकर या किसी आलिम का हवाला देकर अगर इसको नकल किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, यानी वो उलमा के जिनके नजदीक साबित नहीं है वो भी इस बात की इजाजत देते हैं कि इस अक्त को पढ़ा जा सकता है। तो इसको इतना ज्यादा जज्बाती इस में ले जाकर कि गोया बहुत बड़ा किसी ने कोई काम कर दिया हो, बहुत बड़ा खिलाफ इस्लाम बात कर दी हो, ये उलमा के फतावे के खिलाफ है। इसके बाद आयतुल्ला शेख जवाब तबरेजी से ये चीज पूछी गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि ला बासा बे इकामतिल अजाए वल बुकाए अल कासिम अलैहिस्सलाम और अल ज़वाज, कोई हरज नहीं है हजरत कासिम के लिए हत्ता कि उनका उनकी शादी के तस्करे के अंदर भी कोई हर्ज नहीं, البتہ اس کو حتمی طور پر نقل نہ کیا جائے بلکہ ایک احتمال کے طور پر نقل کیا جائے، یعنی 100% کہہ کے نقل نہ کیا جائے کہ واقعی یہ ہوا تھا، بلکہ کتاب کا نام دے کے، حوالہ دے کے اور کوئی اس احتمال کے تحت اس کو نقل کر سکتا ہے. باقاعدہ جو ان کی سیرات النجات کتاب ہے اس کے اندر شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ سند معتبر بہت سارے ایسے پڑھے جاتے ہیں اور تازیہ خوانی یا شبیہ خوانی ہوتی ہے جس میں ایسے تاریخ بے سند جو روایتیں ہیں وہ اس میں کیا پڑھی جا سکتی ہیں، مثلا ازدواج حضرت قاسم. تو جواب دیا کہ اگر معلوم باشد کہ نقل از بعض تواریخ و روایت ہاست اشکال نہ دارد، یعنی اگر معلوم ہو کہ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے اور روایت کی گئی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس میں اتنی زیادہ اس کو فساد کا ایک عنوان بنانا یہ صحیح نہیں. اور رہبر معظم باقاعدہ ان کی جو میں نے جو یہ اس پہ سے نکالا ہے، من اجوبۃ الاستفتاۃ الفقیہ لولی الامر المسلمین السید قائد علی خامنہ ای، تو جو ان کی جو کتاب ہے میں نے تو ڈائریکٹ ویب سائٹ سے نکالی. اب بہت سارے دیکھی چیزیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ جب سے یہ فساد انگیزیاں اس میں شروع ہوئی ہیں تو بہت سارے چیزیں علماء نے فتاوے وغیرہ کتابوں میں سے یا ویب سائٹ پہ سے ہٹا دی ہیں جو لوگوں میں نا اختلاف کا باعث بنے. مجھے اب پتہ نہیں اوریجنل کتاب کے اندر اب بھی ہے یا نہیں، لیکن ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ جہاں پورا وہاں مسئلہ نمبر 669 رہبر معظم کا، ان سے سوال پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 669 کہ محققین میں بہت ساری روایت میں اختلاف ہے، جیسے کہ حضرت قاسم کی شادی، حضرت لیلہ کا مادر علی اکبر کا واقعہ کربلا میں موجود ہونا، یا قافلے کا یوم اربعین کے روز کربلا کا پہنچنا اہل بیت کے قافلے کا، تو کیا خطبہ ان واقعات کو کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا کتاب مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی کی، اور کیا اس کو سننا جائز ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کو حالت روزہ میں رمضان میں حالت روزہ میں بیان کرنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کتنا واضح سوال پوچھا گیا. تو جواب انہوں نے دیا کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو ذکر کرنے میں کتاب کا حوالہ جو آپ نے دیا سید ہاشم بحرینی کا اس کتاب کا یا کسی بھی اور کتاب کا حوالہ دے کر نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، اور اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور لوگوں کے لیے اس کا سننا بھی جائز ہے. باقاعدہ مسئلہ نمبر 669 میں، تو اس لحاظ سے بھی کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. اور آیت اللہ صادق روحانی نے بھی کہا کہ یہ اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وصیت امام کو نافذ کرنے کے حوالے سے اس عقد کو تسلیم کر لیا جائے. اور آیت اللہ محسن الحکیم نے، اب تو اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ میں اس کو پورے کو پڑھوں، انشاءاللہ مہندی والی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر بھی یہ آئے گا، تو اس کے اندر بھی آیت اللہ محسن الحکیم نے اس عقد کو پڑھنے کی اجازت دی کہ حضرت قاسم کے اس عقد کو اگر کوئی شخص مجالس میں پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور آغا ابو الحسن شیرانی فرماتے ہیں کہ بنظر ما ہیچ علتی نہ دارت کہ تزویج حضرت قاسم را انکار کو نہیں. کتاب دم السجوم جو کہ نفس المحموم کا ترجمہ ہے اس میں کہہ رہے ہیں میری نگاہ میں کوئی عذر مانے نہیں ہے کہ میں حضرت قاسم کی تزویج کا انکار کروں. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد علی حائری تبسی، انہوں نے مقتل الحسین کے اندر لکھا ہے کہ روز عاشورہ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ عروسی شہزادہ قاسم ابن حسن بھی، یعنی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور ملا صالح مازندرانی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب کتب مقاتل کا مطالعہ کیا تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس واقعے کو منتخب سے نقل کروں، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح. تو علماء نے دیکھی اس کی اجازت دی، حتیٰ کہ وہ علماء جو اس جن کے نزدیک ثابت نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں کہتے اس کو پڑھنا، زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، حرام نہیں. جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے اپنے فتوی میں لکھا ہے کہ اگرچہ یہ معتبر کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، بہتر ہے. حرام پہلو، کیریکٹر اسیسینیشن، یہ وہ سب باتیں اس طرح کی کوئی بھی انہوں نے ناصر مکارم شیرازی نے اپنے فتوی کے اندر نہیں کی. تو اس لحاظ سے اس کے اندر بہت زیادہ جذباتی پن اس لحاظ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو کہا ہے کہ کیا لوگ اکثر خطبہ حضرات جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس روایت को बयान करने में कासिम की कैरेक्टर असैसिनेशन है, क्या माजअल्लाह किरदार कशी है, यानी क्या किसी गैर शरी काम की नस्बत हजरत कासिम की दे रहे हम, क्या कोई इंतहाई मकरूह या नापसंदीदा काम की नस्बत दी जा रही, या किसी कोई बहुत ही बायस शर्म काम है माजअल्लाह कि उससे नस्बत दी जा रही। सुन्नत रसूल एक अक्द हुआ था, तारीख में हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ कहते हैं हुआ था कुछ कहते हैं नहीं हुआ था, तो अगर इस अक्द को उलमा बयान भी करते आ रहे हो और उसको बयान करने की इजाजत भी दे रहे हो, तो क्या माजअल्लाह वो कासिम की किरदार कुशी की इजाजत दे रहे हैं। तो इस मसले को बिल्कुल भी जज्बाती तौर पर इसको नहीं रखना चाहिए, तारीख की बातों को तारीख की हद तक रहने देना चाहिए। जो मुखालिफीन हैं, जो मुतरजीन हैं, उनके पास भी दलाइल मौजूद हैं, जो जवाब उसका दे रहे हैं जो कायल हैं उनके पास भी दलाइल मौजूद हैं, किताबों में यह अक्द लिखा हुआ है, इश्कालात भी हैं, जवाबात भी हैं, फतावे दोनों तरफ भी हैं, तो उसको फसाद और झगड़ा बयान बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना यह अकायद का मसला है ना वाजिबात का मसला है। और इसकी हिमायत और रद्द में किताबें भी लिखी गई, तकरीर हासिम ले उर्सिल कासिम, बाकायदा उसकी रद्द में किताब लिखी गई है, कौल सवाब फी नफी उर्सिल कासिम, और इसके अलावा जो इसकी हिमायत में लिखी गई हैं किताबें, अल बयानुल मुबरहन फी उर्सिल कासिम इब्ने हसन, और आगे मरशी हायरिय जो शहरिस्तानी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने किताब लिखी अल हुज्जतुल क़ातिया फी इस्बात वुकूउ उर्सिल कासिम इब्ने हसन व रद्द अल तकरीरिल हासिम, या दफुल मुगालता फी मसले उर्सिल कासिम इब्ने हसन बिकरबला, दकुल खशूम फी जवाज़ क़िरात उर्सिल कासिम अल मज़लूम रद्द अल तकरीरिल हासिम वगैरह, कितनी इस तरह की किताबें हैं। और बाकायदा आका बुजुर्ग तहरानी ने अपनी किताब अज़रिया के अंदर 17वीं जिल्द के अंदर और कुछ और जिल्दों के अंदर भी उन तमाम किताबें जो उरूसी कासिम के लिए हक में लिखी गई हैं वो उनके भी नाम नकल किए हैं, जो खिलाफ लिखी गई हैं उनके भी नाम नकल किए हैं, और जो हिमायत में लिखी गई हैं उनके नाम जो है वो ज्यादा हैं अगर 17वीं जिल्द में और जो जिल्दें हैं उसके अंदर भी। तो अब कितनी देखिए किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर बड़े बड़े उलमा ने उरूसी कासिम को नकल किया, हम इसको कोई साबित नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरा पहलू पेश कर रहे हैं कि इसको नजा और झगड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। 27 किताबों के नाम तो इतना वक्त भी नहीं कि इनको पढ़ता, बिल्कुल टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बाद आपका दूसरा लेक्चर भी है, तो इसमें कोई इतने बड़े बड़े उलमा इसको नकल करते आ रहे हो। और इसमें आयतुल्ला जवाद तबरेजी से भी ये बात पूछी गई, उन्होंने इसकी इजाजत दी है पढ़ने की, अलबत्ता ये कहा है कि 100% इसको यकीनी तौर पर पेश ना किया जाए, एक तारीखी बुनवान से जो है वो पेश किया जा सकता है। और उन्होंने एक और भी अच्छी बात लिखी कि क्या आपके पास कितने ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल 100% वाकयात हैं, यकीनी बातें वो आप पेश करें, तो दोनों के लिहाज से बातें हैं इसके अंदर कि उसको उन्होंने इजाजत भी दी है पढ़ने की, और ये कहा है कि बहरहाल जो यकीनी बातें हैं, जो शुबहात हैं लोगों के, वो भी दूर करने चाहिए, तो यकीनी बातें ज्यादा पेश करें बनिस्बत ये कि इंसान मशकूक बातें या इस तरह की बातों को जो है वो पेश करें। तो दोनों अफराद के लिहाज से बात है कि जब इतना ज्यादा सीरियस मसला है नहीं और उलमा ने बयान करने की इजाजत दी है, तो कोई बयान कर रहा है तो उसमें झगड़े और फसाद की और कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरह की बातें ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बस आखिरी, और देखिए ईरान में इस मौजू पर बहुत काम हो रहा है कि जो वाकयात करबला की जो रिवायात हैं मकातिल की, ये इतनी ज्यादा पेचीदा गुंजलक और इख्तलाफ वाली हैं कि आगा सैयद मोहम्मद यजदी नजफी, इनका एक पूरा इदारा है जो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है वाकयात करबला की जो रिवायात है, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर होगा और एक प्रपोजल दिया है कि रिवायात मक्तल की दर्जाबंदी करनी चाहिए रिवायात की। जल्दी जल्दी बस एक मिनट में इसको बात कर देते हैं कि कुछ रिवायतें सही और कतई हो, कुछ रिवायत को सही और कतई करार दिया जाए, रिवायत सही और कतई, और दूसरा रिवायत मजनून, रिवायत मशकूक, रिवायत ज़ईफ, रिवायत महूम और रिवायत दरूग। यानी सही और कतई वो जो सनद के एतबार से भी सही हो, कराइन के एतबार से भी सही हो, वो सही रिवायात होंगी। मजनून वो है जो कराइन उनकी ताइद में है लेकिन यकीन और इत्मीनान की हद तक नहीं कि वाकई वो चीज पेश आई, उन्हें रिवायत मजनून कहा जाए। रिवायत मशकूक के कराइन और शवाहिद ना नफी में है ना ताइद में, यानी दरमियान की बात है, कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। रिवायत ज़ईफ के जन यही है कि वो वाकया नहीं हुआ लेकिन एहतमाल सेहत हद माकूल हद तक है। और इस जो अकद कासिम की जो रिवायत है उसको उन्होंने कहा है रिवायत ज़ईफ है, एक और मुकाम पर यानी उसके कराइन जन्नी तो मौजूद हैं कि शायद 10 मुहर्रम के रोज बहुत मुश्किल है कि वाकया हुआ हो, लेकिन एहतमाल सेहत दर हद माकूल हस्त, यानी बहुत माकूल हद तक उसके सही होने का इम्कान है। और रिवायत महूम तो वो है कि जन गालिब यह है कि वो नहीं हुआ था, और एहतमाल सेहत बहुत ही जयीफ है, और रिवायत दरू जो सनद और कारायन दोनों के लिहाज से बिल्कुल रिवायत काबिल कबूल ना हो। तो अब देखिए, बस इस बात को खत्म करते हैं कि इसको बाइस नजा बनाना, उसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कोई कैंपेन चलाना, लोगों का आपस में एक दूसरे से झगड़ा करना, तानाजनी करना, कोर्ट कचहरी तक मामला चले जाएं, अब ये भी सिलसिले जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो इख्तलाफी रिवायत को बयान करना, जिसमें इख्तलाफ है तारीख में वो बयान करना, यानी अगर कोई दूसरा पहलू बयान कर रहा हो तो, और एक चीज मशहूर हो चुकी हो, राइज हो लोगों के अंदर, और सिर्फ एक ही नजरिए को इम्पोज कर देना कि जो दूसरी बात कर रहा है बिल्कुल हराम और गुनाह कबीर और किरदार कशी कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, इससे कौम में इंतशार होगा। और मिल्लत का जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है वो इतने छोटे छोटे तारीख मसाइल से बहुत ज्यादा है कि हम आपस में दस्तों गरेबा हो, रोजाना की बुनियाद पर कत्ल हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, और हम जो है बैठे हुए कि वो उस तरह की गुफ्तगू, जब हलाकू खान ने बगदाद पर कब्जा किया था तो उस जमाने में कुछ लोग ये वाली डिस्कशन कर रहे थे कि हजरत आदम ने जिस उस्तरे से पहले हज के बाद जो बाल मुंडवाए थे उसकी धार दाएं तरफ थी कि बाएं तरफ थी। अब इस किस्म के वाकयात ये कोई भी हो, उसमें अपने आप को मेहनतें लगाई जाएं सारी की, अब देखें पूरे 2 घंटे का हमने यहां पर इस पे लगाया, हालांकि कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा माशरे के अंदर चीज फैल गई, तो इसमें ये बयान करना मकसद था कि अगरचे रिवायत साबित नहीं भी हो तब भी उलमा ने इसको बयान करने की इजाजत दी है, तो इतना जज्बाती मसला बयान करने की जरूरत नहीं। और जब भी आगा सिस्तानी ने खुतबा जाकिरीन नोहा खानों के नाम, जो अय्याम अजा शुरू होने से पहले जो पैगाम दिया था, उसमें यही कि उन्होंने कहा है कि मिंबर हुसैनी से शियों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को बयान न किया जाए, चाहे इन इख्तलाफात का ताल्लुक फिक्री शोबे से हो या इनका ताल्लुक शायर हुसैनिया से हो, हर सूरत में यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक को जो है वो बरकरार रखना है। और इमाम खुमैनी ने भी सन 1400 हिजरी में अव्वल माह मुहर्रम में जाकिरीन और उलमाए कुम से खिताब करते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया था, वो ये था, क्या फरमाया कि वाइजीन और जाकिरीन और उलमाए कुम से कि शहीद करबला ने हमें मुत्तहिद किया है, इसी आजादारी ने हमें इत्तेहाद की दौलत से नवाजा है, ये शैतानी हथकंडे हैं और शैतान के चबाए हुए लुकमे हैं जिसके जरिए वो हमारे इत्तेहाद को छीनना चाहता है, इस्तेमार के एजेंटों ने उलमा और नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ किया है, दोनों तरफ से नफरत अंगेज बातों ने बाहमी नफरतों में इजाफा किया है। तो जब भी इस किस्म के झगड़े आते हैं और लोग एक दूसरे से बहसो मुबाहिसा करते हैं तो हमेशा देखने में आता है कि इख्तलाफ, झगड़े, एक दूसरे को बुरा भला कहना, फिर उलमा को बुरा भला कहना, ये सब उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये तारीखी वाकया जो कि इख्तलाफी तारीखी वाकया है, इसके अंदर इतना ज्यादा इसको जज्बातीपन इसके अंदर ले आना कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी तक के अंदर नौबत पेश आ जाए, तो एक लिहाज से इसमें यही कहा जाएगा कि शैतान के चबाए हुए लुकमे हैं जिससे वो हमारे इत्तेहाद को छीनना चाहता है। इत्तेहाद बहुत ज्यादा जरूरी है कौम में, छोटे मोटे मसलों के अंदर जज्बाती लिहाज से इसमें नहीं आना चाहिए। और आप लोगों का आखिर में बस यही वाली नसीहत दोबारा कि कोई भी इख्तलाफी बात या जो माशरे के अंदर आपका कोई नजरिया हो, आपकी कोई तहकीक हो, तो जरूरी नहीं कि आप 100% उसको लोगों पे इंपोज करें, बहुत हुआ तो अपना सिर्फ एक कुछ उलमा ये कहते हैं कि इस तरह से, कुछ उलमा कहते हैं इस तरह से, और अपनी बात आप बहुत इस तरह से भी पेश की जा सकती कि माशरे के अंदर कोई फसाद और झगड़ा ना हो, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि किरदार कुशी हो रही है और एक दीन इस्लाम मुनादिम हुआ जा रहा है इस वक्त को बयान करने से, तो ऐसा कोई मसला नहीं, उलमा ने इजाजत दी। अब सिर्फ एक मसला रह गया है कि अभी हमने कहा था कि अगद कासिम बयान करना बिल्कुल अलग चीज है, और मेहंदी क्यों निकालते हैं, ये तो एक गोया एक लिहाज से एक हिंदुआनी रसम है जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है, इस पर उलमा क्या कहते हैं, नजरियात क्या है, इससे मुलहका जितनी और रसूमात अजादारी हैं, इस पर इंशाल्लाह हमारी अगली गुफ्तगू होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन।
الله جل جل يا صاحب السماء الله جل